ओम शांति। सभी भाई बहनें मिलकर बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पिछले 3 दिन से अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग महान वक्ताओं के द्वारा आप बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। आज हम सभी समापन सत्र में वैलिडिटी सेशन में उपस्थित हैं। आज भी बहुत अनुभवी वक्ता हम सबके बीच आने वाले हैं, तो मैं आज के सम्मानित मंच को आह्वान करूंगी कि आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय कुसुम दीदी जी, आदरणीय भ्राता बी के दयाल भाई जी, आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी, ब्रदर प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, ब्रदर प्रभंज्य चतुर्वेदी जी, सिस्टर मोनिका पटेल जी, ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी, ब्रह्मा कुमारी नीहा बहन जी, ब्रह्मा कुमार अनिल भाई जी, सभी के समक्ष उपस्थित हों और मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से नम्र अनुरोध है कि आए और इस व्यासपीठ पर विराजमान हों।
समापन नहीं ये शुभारंभ है, प्रिय बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। जब तलक बीत जाती नहीं रात है, जब तलक हो न जाता सुखद रात है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है, तब तलक साथ चलने का अनुबंध है। ये बधाई की बेला समारंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ। पुनर्स्थापना इसके खातिर बनी ये प्रभु योजना, मूल्य आध्यात्म की हो पुनर्स्थापना इसके खातिर बनी ये प्रभु योजना। आप आए हमें तो बड़ा हर्ष है, आप आए हमें तो बड़ा हर्ष है, होना निश्चित ही भारत का उत्कर्ष है, होना निश्चित ही भारत का उत्कर्ष है। हर हृदय में आनंद आनंद है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है। में झलक मनोहर देखिए, प्यारा परिवार प्रभु पलकों में देखिए, वादियों में झलक मनोहर देखिए, प्यारा परिवार प्रभु पलकों में देखिए, आती आहट है स्वर्ण जहाँ की सुने, आती आहट है स्वर्ण जहाँ की सुने, मुस्कुराहट वो अधरों पर देखिए, मुस्कुराहट वो अधरों पर देखिए, विश्व गुरु होगा भारत प्रकाश स्तंभ है, ये समापन नहीं ये शुभारंभ है।
बहुत ही सुंदर गीत, ये समापन नहीं लेकिन शुभारंभ है। तीन दिन से हम सभी बहुत सुंदर सुंदर विचार सुन रहे थे, परंतु आज हमारे भाइयों ने गीत के माध्यम से बताया कि अब जाकर के हमको क्या करना है। यहाँ से जो नई नई प्रेरणाएं लेकर के जा रहे हैं उनको अपने जीवन में क्रियान्वित करना है, औरों के सामने सैंपल और एग्जाम्पल बनना है। तो इसी स्वागत की कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी भूमि, जो कि निफा से जुड़ी हुई हैं, फतेहाबाद से आई हैं, नृत्य और गीत का समन्वय लेकर आ रही हैं, और राजस्थानी नृत्य के द्वारा इस सम्मानित मंच का अभिवादन अभिनंदन करेंगी कुमारी भूमि।
सुन
बहुत सुंदर नृत्य कुमारी भूमि ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। सभी फिर से जोरदार तालियों से कुमारी भूमि का हम धन्यवाद करते हैं। और भ्राता चक्रेश जी फ्रॉम चंडीगढ़, आप भी स्टेज पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें भ्राता चक्रेश जी। और अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी, नम्रता विनम्रता निरअहंकारिता की प्रतिमूर्ति राजयोगी भ्राता दयाल भाई जी, जो कि बहुत लंबे अरसे से ज्ञान सरोवर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप आर्ट एंड कल्चर विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आज के विषय पर आप हम सबको अपने पावन पुनीत विचार देंगे। आज का जो सुंदर विषय रखा गया है, दैवी विश्व निर्माण की ईश्वरीय योजना। तो आमंत्रित हैं भ्राता दयाल भाई जी, सभी स्वागत करें तालियों से भ्राता दयाल भाई जी का।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे अति विशेष भ्राता करुणा भाई जी, हम करुणा भाई जी को जरूर याद करते हैं हर कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। भाई आज जंगल में मोर नाचा था, सच में देखा किसी ने? यहां बहुत मोर है आजू बाजू, अभी भी मोर नाच रहे हैं, लेकिन ये मोर अलग ढंग के हैं, ये नाच अलग ढंग का है। करुणा भाई जी हमारे मीडिया प्रभाग के संचालक है ब्रह्मा कुमारी की, ये सारे कैमरेज अगर ना हो तो एक्ट करने वाले को भी मजा ना आवे। जब से आप लोगों ने सुना होगा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होके हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल में जाएगा, या ये भी सुना है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है हमारी पीएम टीवी में भी, नेट पे ये सारे प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, तो एक्ट करने वाले को और उमंग उत्साह आता है, फटाफट घरों में फोन करते हैं देखो देखो। तो हमारे करुणा भाई जी खास विशेष हमारे सारे प्रोग्राम्स को पीस ऑफ माइंड में भी देते हैं। प्रभंजन भाई हमारे नए फैमिली मेंबर हैं, मेहमान नहीं है ना, फैमिली मेंबर है, क्योंकि यहां जो भी एक बार आते हैं फैमिली मेंबर बन जाते हैं। वैसे ही लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी को, अरे ब्रह्मा कुमारी में जाओगे तो जरा संभाल के जाना, वहां जाते हैं तो अंदर ही हो जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है। इसी तरह 3 साल पहले हमारे प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, नीफा नाम की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल संस्था है करनाल में, 3 साल पहले यहां आए थे, कुछ ब्रह्म कुमारी नहीं भ्रम लेकर आए थे। जब उनके भ्रम स्पष्ट हुए क्लियर हुए तो वो भी फैमिली मेंबर बन गए। अब बाकी हमारे भाई साहब, हाँ जी चक्रेश भाई, देखो चक्कर लगाते लगाते यहां पहुंच गए, मुझे पक्का विश्वास है ये भी फैमिली मेंबर बन जाएंगे। आप लोग भी फैमिली मेंबर बने हो कि नहीं बने हो? हाँ, कौन सी फैमिली? ईश्वरीय फैमिली, ठीक है ना। हमारी मोनिका बहन जी इसी तरह कितने साल हो गए, मैं सोचा 3 साल हो गए, कल बता रही थी कि 5वां साल शुरू हुआ इनको, 4 साल पूरे हो गए, और यही मई का महीना होगा, हमारी कॉन्फ्रेंस मई के महीने में ही होती है। आई थी ऐसे हंसते हंसते रोते रोते गई। तो और गई नहीं, और जाके कईयों को लेके आई। पहले कबूतर का खेल हुआ करता था पुराने जमानों में, अल्लाह वो कहां लखनऊ अपने में, एक कबूतर छोड़ा जाता था और कबूतरों को लेके आ जाता था। अभी 6:30, 30:40 का ग्रुप लेके आई है। और ऐसे ही नहीं, उनके साथ में ड्रामा प्लान करके, कल जो रात को आपने ड्रामा देखा, उनकी डायरेक्टर राइटर बहन जी है। तो ऐसे विशेष अतिथियों का हम पहले हृदय से दिल से स्वागत करते हैं। स्टेज पर उपस्थित हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर कुसुम बहन जी, अब प्रेम बहन जी तो बात ही अलग है, जैसा नाम है वैसे स्वभाव है, प्रेम से हमें बुलाती है, खिलाती पिलाती है, और निफा को हमसे परिचय कराने वाली प्रेम बहन जी निमित्त है। पन्नू जी पहले आए थे, अभी 64 का ग्रुप लेके आए हैं। सेवेंटी का ग्रुप लेके आए हैं। वो 5वें ऐड बाद में हुए ना, इतने खिसक जाते हैं। आप लोगों का क्या इरादा है? आप लोग आए हैं, नए नए फैमिली मेंबर आए हैं, संकल्प करके जाइए कि एक एक दस दस को लेके आएंगे। रेडी? थैंक यू वेरी मच। मैं आपके आज के विषय पर आता हूं। वैसे हमारा विषय तो सब लोगों को तीन दिन से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, आध्यात्मिकता द्वारा कला और कलाकारों में दिव्यीकरण, दिव्यीकरण, डिविनाइजेशन। ये दिव्यता क्या चीज है? आप लोग सोचते हो ये लोग आए तब से दिव्यीकरण, दिव्यता, दिव्यता बात कर रहे हैं। टॉपिक भी निकली है दैवी, दैवी विश्व निर्माण की ईश्वरीय योजना। आप सोचते हैं इनको कोई धंधा ही नहीं है, दैवी की बात करते रहते, ईश्वर की बात करते रहते। संस्था का नाम क्या है भाई साहब? वो पीली पगड़ी वाले भाई साहब, हाँ खड़े हो जाइए एक मिनट। संस्था का नाम क्या है? बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं आप दूर से। संस्था का नाम पता है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, याद कर लीजिए भाई। जिस स्कूल में आए हैं आपने अपने स्कूल को का नाम तो याद होगा ना। बच्चे बैठ जाइए। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो पूछते हैं बच्चों को, बेटा कहां पढ़ते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो, क्या स्कूल का नाम क्या है? मैं पूछो आपके स्कूल का नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर, भगवान, दिव्यता, हम लोग यही शब्द रिपीट कर रहे हैं चार पांच दिन से। तो दैवी विश्व की निर्माण, साधारण विश्व नहीं, दैवी विश्व की निर्माण की योजना किसकी? मेरी, आपकी, ईश्वर की। तो हमको पहले समझना होगा ईश्वर कौन है और कितने हैं। सब लोग कहते हैं एक है और सबने अपने अपने बना रखे हैं, राइट है ना? तो हमको सबसे पहले उस एक को समझना होगा जो आपने सेकेंड डे 2 तारीख के 10 बजे के सेशन में आपको ईश्वर का, और शाम को आपको आत्मा का, सुबह आत्मा का और शाम को आपको परमात्मा ने ईश्वर का परिचय मिला। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, इस बूढ़े तन के द्वारा आकर उन्होंने ये विश्व के देवी देवताओं वाले विश्व के निर्माण के लिए ये स्कूल की रचना की है, जिसमें आप लोग ये सब सुनने और समझने के लिए और अपने अंदर दैवी गुण धारण करने के लिए यहां पर आए हैं। क्लियर है? ये बात हमारे बुद्धि में क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग यहां कल्चरल प्रोग्राम तो लेकर आए हैं, करने भी आए हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा है दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करना। अब दैवी गुण क्या होते हैं? ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है? सोशल वैल्यूज क्या होती है? ये हमको पढ़ाई गई है, ये हमारी पढ़ाई है। हम लोग इसको अलग अलग ढंग से जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक एक दूसरे में हमारे माइंड में विचारों में कंफ्यूजन रहेगा। डिवाइन वैल्यूज ऐसी डीप रूटेड गहरी वैल्यूज होती है जो शेकेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को स्कूल में, घर में सिखाया जाता है बेटा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, ऐसा सिखाते हैं ना? किसी को सिखाया माँ बाप ने बेटा झूठ बोलना, ऐसा सिखाया नहीं? लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, माँ बाप भी झूठ बोलते हैं, बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाते हैं। जब हम लोग स्कूल में रहते हैं तब तक मैंने ये देखा है कि हमारी बुद्धि काफी शुद्ध रहती है। हम ज्यादा नहीं, मतलब का हो तो थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, ज्यादा झूठ नहीं बोलते हम, ज्यादा कुछ भी गड़बड़ नहीं करते। लेकिन जब हम समाज में आते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या प्राइवेट जॉब में जाते हैं, वहां जो हमारा झूठ बोलने का, छुपाने का सिलसिला चालू होता है तो अंदर से हमारा कॉन्शियसनेस हमको बाइट करता है, ये ठीक नहीं है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूं। मैं शुरू शुरू में जब मैंने अपना पढ़ाई खत्म की, मैं मेडिकल रेप बना, तो मैंने देखा हमारे काम के अंदर हमको बोला गया कि नहीं ये नहीं बोलना है, जो सच है फिर भी कहते नहीं ये नहीं बोलना है, ये बोलना है। तो मुझे अपने आप को बहुत तकलीफ हुई शुरू शुरू में, कि क्या हमने सीखा क्या है, हमको माँ बाप क्या सिखा रहे हैं, हमको स्कूल क्या सिखा रही है, हमको एजुकेशन क्या सिखा रहे हैं और समाज में हम क्या कर रहे हैं। तो हमको अपने आप को बहुत मोल्ड करना पड़ा। अभी भी आप लोग देखेंगे, कोई किसी से पूछेंगे, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह से जो ब्राइब वगैरह लेते हैं, शुरू शुरू में नहीं लेते थे, अच्छा नहीं लगता था, कहते थे हमारे घर में हमारी बीवी बच्चे हैं, ऐसा पाप का धन हमको नहीं चाहिए। अभी भी वही बात कहते हैं कि हमारे घर में बीवी बच्चे नहीं है, क्या हमको भी चाहिए? पहले वही है नहीं चाहिए, अभी वही सेंटेंस है हमको भी चाहिए। मनुष्य कहां से कहां गिर गया? तो हमारी वैल्यूज कहां गई? क्या हम इसको डिवाइन वैल्यूज कहेंगे, ये दिव्यता के वैल्यूज कहेंगे? तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ सिर्फ एक बात के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि हम परिस्थिति के आगे, व्यक्ति के आगे, अपने खराब संस्कारों के आगे न झुके, हम अपने वैल्यूज में दृढ़ता से रहें। हमारे समाज में दृढ़ता से वैल्यूज को, गुणों को पकड़कर चलने वाले भी व्यक्ति हैं जो महान कहलाए हैं। उन्होंने मार खाई है लेकिन हिंसा का हाथ नहीं उठाया। उन्होंने सच्चाई, सफाई, ईमानदारी का, ऐसे कई है समाज के अंदर अभी भी, जो ईमानदार होते हैं वो बेचारे गरीब होते हैं लेकिन अंदर से अमीर होते हैं। उनकी कॉन्शियसनेस उनको अंदर से शाबाशी देती है, वाह वाह करती है। दैट इज द वैल्यूज। तो हमारी जो अंदर की आत्मा की हमारी आवाज है, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, एक दूसरे के साथ में स्नेह करना, एक दूसरे को हेल्प करना, इसमें उम्र का किसी प्रकार की जाति भेद का कोई सवाल नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब मनुष्य आत्माएं हैं। तो यहां हम लोग अपने ईश्वरीय निर्माण की योजना में हम तभी शामिल हो सकते हैं, हम तभी उसके अंदर अपना योगदान दे सकते हैं जब हम दृढ़ता से अपने अंदर हमारे आत्मिक गुणों को पहचाने और उनको पकड़ कर रखें। ठीक है? पक्का? आज से कोई गलत काम हम नहीं करेंगे, भले सफर करेंगे। उल्टी धार से चलने वाला ही महावीर होता है। समाज की धारा में उल्टी सीधी बातों में बह गया, अपना क्षण भर का काम निकाल लिया, क्या बड़ा काम किया? अंदर से आत्मा धिक्कारेगी और ऊपर जाके फिर तो बालों में क्या होता है ऊपर, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बच्चे क्या करके आए हो, तो उसको क्या मुंह दिखाएंगे? और सिर्फ मुंह दिखाने की बात नहीं है, उसके बाद के कई जन्म हमारे कैसे होंगे ये सोच लो। हम सिर्फ एक जन्म के नहीं है, ये हमारी जन्मों की कड़ी है, ये माला है। हम एक बार ऊपर से नीचे आते हैं, पूरे अपने जन्म का चक्कर लगाकर, एक ही फोर का चक्कर लगाकर फिर ही वापस जाते हैं, वहां सारा हिसाब देना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए इसका सबसे बड़ा आधार है हमारे आत्मा के अंदर जो बेस्ट वैल्यूज है उसको पकड़कर अपने जीवन को चलाना। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत सुंदर विचार दिए हमारे आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी ने आज के विषय पर, दैवी विश्व निर्माण की ईश्वरीय योजना। तो आप हमारे उपस्थित भाई बहने, कलाकार भाई बहने, दैवी विश्व निर्माण के इस योजना में बहुत सुंदर अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि कला मानव को देव भी बना सकती है और दानव भी बना सकती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी के अंदर एक दिव्य मूर्ति छिपी हुई है जिसको उजागर करना है। एक छोटी सी बात कि एक बार एक व्यक्ति एक मूर्तिकार के पास जाता है और कहता है कि मुझे मूर्ति बनाना सीखना है। तो मूर्तिकार कहता है, मैं मूर्ति बनाता नहीं हूं, पत्थर के अंदर मूर्ति तो छिपी हुई है, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा पत्थर को निकालता हूं और मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबके अंदर भी वो दिव्य मूर्ति छिपी हुई है, सिर्फ एक्स्ट्रा यानी जो कमियां, कमजोरियां, खराबियां और हमारे जो बुरे संस्कार हैं, सिर्फ उन सबको निकालना है। परंतु वो निकलेंगे कैसे? राजयोगा मेडिटेशन से, आध्यात्मिकता का जीवन में समावेश करने से, देखते ही देखते हमारे इस तरह के सब संस्कार निकल जाएंगे और हम एक दिव्य मूर्ति सबके समक्ष बनकर के उपस्थित हो जाएंगे। तो इसी भी आज के सुंदर विषय पर हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी करुणा भाई जी, जो हम सबके बीच उपस्थित हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आप स्पोक्स पर्सन हैं, आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी, हम सबके समक्ष आज के इस वैलिडिटी सेशन में विशेष अनुरोध पर आप पधारे हैं। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से युवा काल से जुड़े हुए हैं और चीफ ऑफ पीआर कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्पोक्समैन ब्रह्मा कुमारी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर यहाँ के हैं। आप मीडिया विंग, जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सिस्टर कंसर्न है, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, आप इसके मीडिया विंग के वाइस चेयरपर्सन भी हैं। आपको अनेक अवार्ड से नवाजा भी गया है, तो अधिक समय ना लेती हुई, क्योंकि आपका बायोडाटा तो बहुत ही लंबा है, परंतु आप खुद ब खुद उनसे सुनेंगे, तो आज के विषय पर भी अपने विचार रखेंगे और हम सबको ब्लेसिंग्स भी देंगे, ग्रीटिंग्स भी देंगे। आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी, सभी तालियों से स्वागत करें।
ओम शांति। अरे दयाल भाई जी ने आपको बहुत कुछ बताया है, मैं जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रथम बार आप जैसे सन 1960 में माउंट आबू आया था, एक ही लक्ष्य मन में रख के कि आबू पर्वत पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है, हरेक मानव आत्मा को ईश्वर से मिलने की इच्छा होती है, ईश्वर के बारे में भारत के हर आत्मा को स्मृति है। कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न को। तो दुख तो सबको होता है, तो उस समय पर ईश्वर को ही याद करते हैं। तो जब मैं पिताश्री जी से यहां मिला तो उनको देखते ही मुझे ये प्रसन्नता हुई कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में है जिनको आज के दुनिया में गिनते हैं कि मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, परंतु हमारे पिताश्री जी उस समय के मल्टी बिलियनियर थे, वो डायमंड मर्चेंट थे, जिनके जो गिराक है भारतवर्ष के राजा महाराजाएं थे, स्वयं ब्रिटिश के जो वहां के रानी है वो भी बाबा से खरीदते थे, तो उनके बच्चे बाबा के बच्चे कहते थे निर्मल शांता दीदी कि हम लोग हीरे जवाहरों से खेलते थे। ऐसे व्यक्ति इस आबू पर्वत पर मैंने देखा, बिल्कुल एक साधारण जीवन बिता रहे थे, 3:30 बजे उठते, ईश्वर को याद करते, तपस्या करते, तो उनकी जो पर्सनैलिटी, उनकी जो आकर्षण मुझे इतना अच्छा लगा, मैं धन्य हूं कि शिव को जब मैं मिलूं, परंतु ऐसी एक महान हस्ती से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, जो आज तक, मैं उस समय पर 20-21 साल का था, आज मैं 75 ईयर्स का हूं, मुझे इतना हर्ष है, संतुष्टता है कि उनकी उनसे जो पहली मुलाकात हुई वो मुझे आज तक भी इस संस्था में ये आनंद को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला जो आज आप सभी अपने घर में है ना, ऐसे आनंद को मैं प्राप्त करता रहा। परंतु उन्होंने मुझे क्या प्रेरणा दी तो मैंने पूछा पिताश्री जी से मुझे क्या करना होगा। आप सोचते हैं एक जवान, मैं इंजीनियर था तो यही स्वप्न देखते थे कि ज्यादा से ज्यादा कमा सके। इस दुनिया में पैसा कमाना, नाम कमाना, ये सब चाहते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये चाहते हैं। तो पिताश्री जी ने कहा बेटा मैंने जो किया वही आपको करना होगा, तो आप बताइए। पिताश्री जी उस समय के जो मल्टी बिलियनियर मिलियनियर थे और वो एक साधारण व्यक्ति बन के रह रहे हैं, तो मुझे भी उन्होंने यही लक्ष्य दिया कि तुझे भी चाहे तुम अपने लिए जी सकते हो, चाहे दूसरों के लिए जीते हुए भी अपने लिए जी सकते हो। मुझे पहली समझ में नहीं आया कि दूसरों के लिए जीते हुए भी अपने लिए जी सकते हो, तो फिर याद आया इफ यू स्माइल वर्ल्ड विल स्माइल टू यू। हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों को संतुष्ट करने के लिए हम मुस्कुराते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो वो आपको भी करते हैं। तो जब हम खुशियां बांटते हैं वो मल्टीप्लाई होके हमको वापस मिलता है। तो स्कूलों में हम सब पढ़ते हैं कि अंधे को हमने हाथ पकड़ करके रास्ता तो एक रोड क्रॉस करते हैं, तो जो खुशी उस समय पर जो आपको होती है वो हरेक को अपना आनंद है, अपना अनुभव है। तो दूसरों के लिए कैसे जीना और उसमें अपनी खुशी कैसे पाना, उन्होंने मुझे ABCD उस समय पर सिखाया जो आज मेरी जिंदगी में वो संतुष्टता वो खुशी भरा हुआ है। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव की अवतरण इस सृष्टि पे हुआ है, तो इस बात को इन तीन शब्दों में इन्होंने सुनाया, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? एक ईश्वर, एक विश्व, एक परिवार, वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली। आज भी ब्रह्मा कुमारियों की सारी जो शिक्षा है इन तीन बातों पर है। और आज आप इस तीन बात पर विश्वास करते हुए अपने आप को इन तीन बातों पर अमल करने शुरू कर दे, सारे विश्व में जो आज हम देख रहे हैं जो विरोधाभास नेगेटिविटी जो है, चाहे धर्म का है, चाहे राष्ट्र के है, चाहे भाषा के है, ये सब समाप्त हो सकता है। शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा यही सत्य को इस सृष्टि पर कायम कर रहे हैं। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारे विश्व में फैला है, सभी देशों में सब लोगों ने सम्मान से ये संस्था की स्थापना वहां किए हैं, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो नींव है वो इस बात पर है कि एक ईश्वर, एक विश्व और एक परिवार। तो तभी आप देख रहे हैं कि चाहे आप अभी ज्ञान सरोवर में है या हमारे पांडव भवन है कॉम्प्लेक्स, आप नीचे शांतिवन में भी आएंगे, हम हजारों भाई बहने यहां है, तो सबके अंदर खुशी है। सुंदर हमारी कलाकारों में तो मेकअप करना सुंदरता की एक अविभिज्य अंग है, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम सबका नेचुरल एक मेकअप जो है वो खुशी है, हर्षित मुक्ता है। एवरी टाइम आप देखेंगे कभी भी वो मुस्कुराते हैं, खुश है। तो ये हमारी शिक्षा के रिजल्ट है। तो मैं भी ये चाहता हूं, तो सत्यम एक शिव, एक निराकार, एक ज्योति स्वरूप परमात्मा और सुंदर, आप सभी खुश होकर के यहां से जाएंगे ऐसी आशा करता हूं। मुझे कहा गया कि आशीर्वाद वचन, तो मैं ये चाहता हूं अभी तक तो हम सबकी दुआएं लेते रहे, परंतु आज आप यहां से जाएंगे अपने आप अपने ऊपर आशीर्वाद करने का अभ्यास करते जाएंगे। तो मैं एक ईश्वर का संतान हूं, मैं सदा खुश हूं, संतुष्ट हूं, ये स्मृति सुबह सुबह आप अपने ऊपर करते हैं तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और मुझे खुशी है कि कारणे अकारणे छोटी सी बहाने से आप सभी यहां एकत्रित हुए हैं, तो बहुत लकी हो तो स्वयं ईश्वर के स्थान पर आए हैं, तो इस आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए संतुष्ट होके अन्य आत्माओं को संतुष्ट करने की वायदा करते हुए यहां से जाएंगे, ऐसे आशा करते हुए मैं अपना ये दो शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी विचार आदरणीय भ्राता जी ने हम सबको दिए, सभी करतल ध्वनि से भ्राता जी का धन्यवाद करेंगे। और साथ ही साथ अब मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय भ्राता प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, लीफा चेयरमैन, शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं से ओतप्रोत हमारे समक्ष हैं भ्राता प्रीतपाल सिंह पन्नू जी। आप निफा के चेयरमैन हैं और आपके नेतृत्व में देश के 21 राज्यों के इंडियन कल्चर से जुड़े हुए 3000 युवा कलाकार इस संस्था से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने भी आपको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपकी संस्था के नाम हैं। ऐसे विशेषताओं के धनी भ्राता प्रीतपाल सिंह पन्नू जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। करनाल में भी यदा कदा प्रोग्राम्स होते हैं तो आप हम सबको भी उन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रखते हैं, और खास हेडक्वार्टर से हमारे आदरणीय भ्राता दयाल भाई जी, सतीश भाई जी व आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए अन्य मेंबर्स को भी आप हर साल अपने निफा का जो प्रोग्राम 10 दिवसीय प्रोग्राम करनाल में रहता है तो आप उसमें आमंत्रित करते हैं, और इस संस्था से जुड़कर आपको भी बहुत खुशी है। और हर वर्ष आप इस आर्ट एंड कल्चर की कॉन्फ्रेंस में बहुत ही दिल से, भाव से, बड़े ही प्यार से, बड़ी श्रद्धा से आप यहाँ पर पधारते हैं और अपने सुंदर विचार भी सबके समक्ष रखते हैं। तो आज भी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने सुंदर विचार हम सबके सामने रखें और अपना अनुभव भी सबके साथ शेयर करेंगे। भ्राता प्रीतपाल सिंह पन्नूज।
मैं बहुत सम्मान के साथ, जिन्होंने अभी आपको अपनी ब्लेसिंग्स दी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी, ब्रह्मा कुमार दयाल भाई जी, जिनकी कोऑर्डिनेशन में ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, इस आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन जी, और मंच पर विराजमान अन्य जो हमारे अतिथि हैं, ब्रदर प्रवंजय चतुर्वेदी जी, बहन मोनिका पटेल जी, ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी, ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी, अनिल भाई जी, चक्रेश भाई जी, और कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर ढंग से कोऑर्डिनेट कर रहे जिनके कारण आज हम यहां पर हैं, ब्रह्मा कुमारी प्रेम बहन जी। और इस सुंदर हॉल के अंदर आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण कर रहे प्यारे श्रोताओं, आज का विषय है दैवी विश्व निर्माण की ईश्वरीय योजना। बहुत गूढ़ विषय है, बहुत गूढ़ विषय है, और मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता, इतना सक्षम नहीं समझता कि इस गूढ़ विषय की परतें खोल पाऊं। कुछ परतों को दयाल भाई जी ने, करुणा भाई जी ने आपके सामने खोला, मुझे आशा है कि जो बची हैं उनके बारे में हमें कुसुम दीदी जी से जानने का मौका मिलेगा। तो मेरी जीवा के अंदर तो ताकत नहीं है इतनी कि ये बहुत गूढ़ विषय है इसकी परतें खोल पाऊं, लेकिन क्योंकि कलाकारों के बीच में रहता हूं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में काम करता हूं, कुछ अनुभव हैं जिंदगी के जिनके माध्यम से इस विषय पर कुछ मेरे अपने विचार हैं, अपने अनुभव हैं, वो आपके रूबरू जरूर करना चाहूंगा। ईश्वरीय गुणों का समावेश कब हो, दैवीय गुणों का समावेश कब हो, आध्यात्मिकता का हमारे अंदर आगमन कब हो, इससे पहले हम कलाकारों को यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या कला और अध्यात्म का कोई आपस में संबंध है। क्या कला केवल स्टेज पर आकर नाच गाने तक सीमित है? क्या कला केवल जो है बहुत अच्छा नाटक दिखाने तक सीमित है? क्या कला केवल अच्छी सुंदर ड्रेस पहनकर मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने तक सीमित है? या कला का आध्यात्मिकता से कोई संबंध है? यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर आध्यात्मिकता को हम लोग संतों महापुरुषों तक सीमित कर देते हैं, ये तो उनका विषय है, ये तो भक्तों का विषय है, इससे कलाकार को क्या लेना देना, अक्सर ये आता है। या जो भजन गाने वाले हैं उन तक आध्यात्मिकता सीमित है। हम लोग जो नृत्य से संबंध रखते हैं, हरियाणवी नृत्य करते हैं, पंजाबी करते हैं, क्लासिकल डांस करते हैं, कलाकार हैं हम लोग, हमारा क्या संबंध है आध्यात्मिकता से? हम हर कला के कार्यक्रम के अंदर, जब भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है हमारे देश के अंदर, आप लोग सभी इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत जो है देवी मां सरस्वती के चित्र पर फूल अर्पित करके या उनके चित्र के आगे दिया जलाकर करते हैं, ऐसा करते हैं या नहीं करते? रूबरू मैं बातचीत करना चाहूंगा, मुझे भाषण नहीं देना, आप लोगों से बीच बीच में मुझे जो है रिस्पांस भी चाहिए। सभी कलाकार बैठे हुए हैं, करते हैं या नहीं करते? करते हैं। यानी कला का संबंध किससे है? देवी सरस्वती से। और देवी सरस्वती क्या है? अध्यात्मता की गुरु है, अध्यात्मता की देवी है, जो परमात्मा के साथ हमें जोड़ती है, उसी परमात्मा का एक रूप है वो। हम जब नृत्य की बात करते हैं तो नटराज स्वरूप का अक्सर जिक्र आता है। नटराज के नाम पर बहुत बड़े सम्मान दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। नटराज की मूर्ति को मोमेंटो के रूप में कलाकारों को दिया जाता है, जिसे कलाकार बड़ी हंसी खुशी से ग्रहण करते हैं। वो नटराज क्या है, कौन है नटराज, कौन है? शिव। शिव का जो स्वरूप है नटराज, तांडव नृत्य जिन्होंने किया, तो शिव का संबंध किससे है? आध्यात्मिकता से संबंध है। कला के आगे रूप बहुत होते गए, बहुत कुछ नया निकलता गया, कुछ पश्चिमी सभ्यता के कारण नई नई चीजें आती गई, लेकिन हमारा जो मूल है भारतीय संस्कृति का, भारतीय आर्ट एंड कल्चर का जो मूल है, उसकी शुरुआत ही आध्यात्मिकता से होती है। यह हर कलाकार को जान लेना बहुत जरूरी है, और जो कलाकार इस बात को नहीं जान सकता, वो मंच पर एक अच्छा प्रदर्शन करने वाला तो हो सकता है, एक सच्चा कलाकार नहीं हो सकता। ईश्वर को हम कहते हैं परम कलाकार, महान कलाकार, परम कलाकार जिसने इतनी सुंदर रचना बना दी, परम कलाकार। तो परम कलाकार के बाद किसका नंबर आ रहा है? कलाकार का। हम अपने आप को परम कलाकार के बाद मानते हैं कि वो परम कलाकार है, हम उसके कलाकार हैं। तो भाई, जब परम कलाकार के साथ आपका जुड़ाव ही नहीं है तो कलाकार कहेंगे? कलाकार वही है जिसका जुड़ाव उस परम कलाकार के साथ हो। और कला वही है जो अपनी वैल्यू ना खोए, अपने संस्कार ना खोए, अपनी जो मूल धारणा जिसको लेकर वो शुरू हुई थी, उस मूल धारणा को ना खोए, वही सच्ची कला है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, उसका मर्म समझने का प्रयास करना। उसको मैं यहां रिलेट कर रहा हूं, वैसे वो कहानी किसी और चीज को लेकर है, लेकिन मैं उसे यहां रिलेट कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। एक नगर के अंदर एक व्यक्ति समोसे बेचा करता था। उस व्यक्ति के समोसे बहुत स्वादिष्ट थे, लाइन लगाकर समोसे बिका करते थे। उस व्यक्ति की खासियत क्या थी कि एक, वो आज का तेल कभी दूसरे दिन यूज नहीं करता था, शुद्ध तेल इस्तेमाल करता था, दूसरे दिन वो तेल कभी इस्तेमाल नहीं करता था। अगर उसके कुछ समोसे बच गए, वैसे तो बचते ही नहीं थे, अगर कुछ बच गए तो या तो किसी को फ्री में गरीब को दे देता था या उन्हें फेंक देता था। आज के समोसे दूसरे दिन यूज नहीं करता था, और चटनी भी हर रोज नहीं बनाता था। तो लोगों में था कि इसका समोसा बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हर रोज उसके 500 समोसे बिक जाते थे, और वो समोसे बेच बेच कर उसने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया कि बेटा तू MBA करके आ, तो आगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर, मैं चाहता हूं तो जिंदगी में खूब तरक्की करे। बेटा MBA पढ़ के वापिस आया, बोला पिताजी मुझे MBA के अंदर एक बात पढ़ाई गई है कि मंदी आने वाली है, मंदी आने वाली है, पूरी दुनिया में मंदी आने वाली है। तो बोला बेटा क्या करना चाहिए? बोला पिताजी मेरी सलाह से अब आप समोसे बेचिए, मेरी सलाह से समोसे बनाइए, हमें मंदी के दिनों का अभी से ध्यान रखना होगा। तो बोला बेटा तूने MBA की है, तू मेरे से ज्यादा समझदार है। तो बोला पिताजी आज हम ये करेंगे कि आज का जो तेल है पूरा नहीं फेंकेंगे, उसमें 30% तेल आज का बचाएंगे, कल 70% नया तेल डालेंगे, तो एक दिन का तेल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे हमारा 30% की बचत हो जाएगी। पिता बोले कि तू समझदार है, जैसा तेरे को ठीक लगे। वही हुआ, अगले दिन 30% तेल एक दिन पुराना डाला गया, 70% तेल नया डाला गया, समोसे बनाए गए, हल्का सा टेस्ट में फर्क आया, पर लोगों को लगा हो सकता है वैसे लगा हो, और वो 500 के 500 समोसे बिक गए। बोला पिताजी देखा 30% की सीधी सीधी बचत हो गई, अब हम आज ये करेंगे कि आज हम 70% तेल रख लेंगे, 30% फेंकेंगे, कल 70% आज का डालेंगे और 30% नया डालेंगे, 70% की बचत करेंगे। बोला बेटा ठीक है, जैसे तेरे को ठीक लगे। अगले दिन वही हुआ, जो ग्राहक थे उनको समोसों के अंदर वो टेस्ट नजर नहीं आया, 400 बिके, 100 बच गए। बोला पिताजी मैंने पहले कहा था मंदी आने वाली है, देखिए 100 समोसे बच गए, मैंने कहा था मंदी आने वाली है, मैं पढ़ के आया था। तो ऐसा करते हैं, ये 100 समोसे फ्रिज में रख देते हैं, इसका घाटा पूरा करने के लिए हम ये पूरा का पूरा तेल भी रख लेते हैं, कल यही तेल इस्तेमाल करेंगे और ये 100 समोसे बीच में मिक्स करके 400 नए बनाएंगे, हम इस घाटे को कल कवर कर लेंगे, मंदी के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। वही हुआ, अगले दिन ग्राहकों को लगा कि यह तो कुछ गड़बड़ हो रही है। 300 समोसे बिके। बोला, पिताजी देखा, मैंने कहा था मंदी आने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जो वैल्यू थी उसको डाउन करता गया करता गया, और एक दिन ऐसा आया कि वो दुकान बंद हो गई। मसला मंदी का नहीं था, मसला उस स्वाद उस टेस्ट का था, उस वैल्यू का था जो उन समोसों के अंदर थी, जो क्वालिटी थी उनके अंदर, मसला उसका था। वो मूर्ख नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्वालिटी डाउन कर रहा हूं, इसकी वजह से मंदी आ रही है, मंदी आ रही है इसकी वजह से मेरी दुकान बंद नहीं हो रही, वो नहीं समझ पा रहा था। आज हमारे आर्ट एंड कल्चर के साथ यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता की दौड़ के अंदर हमारे जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्वालिटी थी, जो वैल्यू थी, जिस वैल्यू का पूरा विश्व दीवाना था, हम लोग नई दौड़ के अंदर उस नई मंदी का जो भय हमें दिखाया जा रहा है कि नई जो सभ्यता आ रही है उसके साथ तो कदम से कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा, हम उससे कदम मिलाने के चक्कर में अपने असली कदमों को छोड़ते जा रहे हैं, अपनी क्वालिटी को छोड़ते जा रहे हैं। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, LIC के अंदर मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूं। 3-4 साल पहले बहुत सी प्राइवेट कंपनीज आई, आप सभी जानते होंगे। हम लोग कन्वेंशनल बीमा के अंदर काम करते थे। जो नई कंपनियां आई उन्होंने आते ही यूलिप शुरू कर दिया, शेयर मार्केट के साथ इंश्योरेंस को जोड़ दिया। हमारी जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स की हमारी फेडरेशन थी, हमने बहुत मैनेजमेंट को आग्रह किया, आप इस दौड़ में मत पड़िए, ये जो आपको फॉरेन की कंपनीज आकर दौड़ दिखा रही हैं यूलिप की, आप इसमें मत जाइए। बोले, पिछड़ जाएंगे, ये आगे निकल जाएंगे। हमने कहा नहीं निकलेंगे, नहीं माना। अंततः क्या हुआ कि जब यूलिप डूबा, इतनी बुरी तरह से डूबा कि वो कंपनियां तो डूबी ही डूबी, हमारे अपने निगम की साख को बहुत बड़ा बट्टा लगा, जिसका नुकसान इतना हुआ कि आज 50% हमारे साथी जो है वो टर्मिनेशन की कगार पर बैठे हुए हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अपने मूल को मत छोड़िए। हिंदुस्तान के कल्चर की, हिंदुस्तान के आर्ट की एक खासियत है, खूबसूरती है कि वो आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है। यहां जब नृत्य किए जाते थे तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाते थे, यहां जब सूफी गायन किया जाता था तो परमात्मा को खुश करने के लिए किया जाता था, आज किसी और को खुश करने के लिए किया जाता है, किसी और के नजरों में अच्छा बनने के लिए किया जाता है। और इसका आने वाले समय में जो आपको रिजल्ट नजर आएंगे वो यही होगा जो उस दुकान का और एक निगम का मैंने आपके सामने उदाहरण रखा है। अब मैं दूसरी बात पर आना चाहूंगा कि यहां आकर हमें सीखना क्या है, कैसे जो है ईश्वरीय जो योजना है उसका हम हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है जो कलाकार साथी आए हैं यहां पर अहम छोड़कर आए, कोई ये सोचकर ना आए कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, मैं बहुत प्रोफेशनल कलाकार हूं, मेरी 2 CD मार्केट में आ चुकी हैं। जो व्यक्ति ये सोचकर आएगा, बुरा मत मानना, जिस घर के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ हो उस घर में नया कुछ आने की गुंजाइश नहीं होती। अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में पहले से कोई ऐसी भावना भरी हुई है, सांप को आपने देखा कितना टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब अपने बिल में आता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है, यानी अपने घर में जब आता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। या आप अपने असली घर में आए हो भैया, जितने भी वो टेढ़े बंग बिलंग हैं वो सब बाहर छोड़कर आइए, यहां बिल्कुल सीधे होकर आइए। अपने हर तरह के अहंकार को कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं उसको बाहर छोड़कर आइए। यहां फिल्म जगत से इतने बड़े बड़े कलाकार आते हैं, अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति भी आएगा तो वो बाबा का भगत बन के आता है, वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बन के नहीं आता। मुनका बहन ना जाने कितने सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, कितने डायरेक्शंस में आ चुकी हैं, और यहां आपको लगता है यहां हमारी वो बहन ही नजर आती है, हमें कहीं भी फिल्म अभिनेत्री मोनिका पटेल नजर नहीं आती। तो मैं स्पेशली हमारे जो युवा कलाकार हैं आपको ये सलाह जरूर देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो है अपना अहम ईगो कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, उसे वो जो बाहर वाला गेट है उसे बाहर रख दीजिए, जाते हुए फिर ले लेना अगर जरूरत पड़े। अगर लगे आपको कि नहीं यहां से मैं कुछ नहीं सीख पाया, तो जाते हुए उस गेट से, जब गेट से बाहर निकलोगे बस को रुकवाना, एक मिनट भैया मेरी ईगो रह गई थी मुझे वापस लेकर जानी है, यहां मत लेके आइए। दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर हमें आध्यात्मिकता की बात करनी है, ईश्वर की ओर बढ़ना है, तो कलाकार से पहले हमें इंसान बनना पड़ेगा। एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। वो सभी गुण, वो सभी अच्छे गुण जिनका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथ करते हैं, जिनका जिक्र संत महात्मा करते हैं, जिनका जिक्र इस मंच से किया गया है, उन गुणों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। और धारण करने के बाद आपको अपने मन के अंदर की शक्तियां, जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा ना, जब इन सामाजिक बुराइयों को, कुरीतियों को, क्रोध को, नशे को, इस प्रकार की चीजों को आप साइड पे छोड़ के यहां पर बैठोगे, तो आपको यहां पर क्या सिखाया जाएगा? मैंने जो अपने अनुभव से बात कर रहा हूं, इस संस्थान के अंदर आपको क्या सिखाया जाता है कि आपके अंदर की जो ताकत है उसको पहचानिए। जिस दिन आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लेंगे, यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे बड़े कलाकार भी बन जाएंगे और दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे सक्सेसफुल इंसान भी बन जाएंगे। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। देवताओं के अंदर एक बार इस बात को लेकर बहुत आपस में विचार विमर्श हुआ कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका अगर इंसान को पता चल गया तो वो दुनिया के हर असंभव काम को संभव कर सकता है, हर मनोकामना को पूरा करने वाली शक्तियां हैं। इनको कहां छुपाया जाए जो इंसान के हाथ ना लगे, क्योंकि अगर इंसान के हाथ लग गई तो इसे देवताओं की जरूरत नहीं रहेगी, ये तो हमसे भी आगे निकल जाएगा। तो इन शक्तियों को कहां छुपाया जाए? एक समझदार देवता थे, बोले ऐसा करते हैं, बिल्कुल ऊंचे पहाड़ के टीले पे छुपा आते हैं जहां पर जाने का कोई रास्ता ना हो। बोले नहीं, ये इंसान बड़ा टेढ़ा है, ये एवरेस्ट पे चढ़ गया, ये उस पहाड़ पर भी चढ़ जाएगा, इसे पता लगना चाहिए कि वहां पर इस प्रकार की शक्तियां हैं, ये जैसे मर्जी जाए ये पहुंच जाएगा। दूसरे बोले समुद्र की गहराई के अंदर, बिल्कुल लास्ट में जाके जहां सबसे ज्यादा गहरा समुद्र हो वहां रख देते हैं इन शक्तियों को। बोले ना, ये इंसान जो है ऐसा, इसने पनडुब्बियां बना ली है, ये इसके गोताखोर ऐसे हैं, ये ढूंढ लेगा वहां से भी, ये बहुत टेढ़ा है, कोई और बताओ। सबने अपनी अपनी राय दी। तो एकांत में एक देवता जो थे, उनकी सलाह सभी को पसंद आई। वो बोले मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूं जहां से इंसान कभी नहीं ढूंढ पाएगा, और झूठ ढूंढ पाएगा वो वास्तव में इसके काबिल होगा, उसको ये शक्तियां मिलनी भी चाहिए। बोला इस इंसान का मन बहुत भटकता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसके मन में शक्तियां रख दो, ये बाहर ढूंढता रहेगा, कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। और जो मन के अंदर से ढूंढ लेगा इन शक्तियों को, जो अपने मन के अंदर घुसेगा उस परमात्मा को पाने के लिए, उन शक्तियों को पाने के लिए, जो ये समझ लेगा कि सब कुछ मेरे ही मन में है, बाहर कहीं कुछ नहीं है, केवल मुझे अपने मन को वैसा बनाना है कि मैं उसमें प्रवेश कर सकूं, मुझे अपने अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा लेकर आनी है कि मैं अपने मन के अंदर प्रवेश करके उन शक्तियों तक पहुंच सकूं, जो ऐसा कर पाएगा वो वास्तव में इसके काबिल है कि वो इन शक्तियों को प्राप्त कर सके। ऐसा करेंगे आप सभी? मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है, मैं अपने स्पेशली युवा साथियों को जरूर कहना चाहूंगा, मेरे साथ भी युवा साथी इस बार 69 आए हैं, असम के साथियों ने भी आना था, हम पर कृपा हुई बाबा की हम आ गए, उन पर कृपा हुई वो नहीं आ पाए। मैं ये भी बताना चाहता हूं, उन पर कृपा कैसे हुई? आप कहेंगे उन पर वो नहीं आए, उन पर कैसे कृपा हो गई? वो पिछली बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर गए थे और उन पर कृपा हुई। एक तो अभी अभी वो मॉरिशस में परफॉर्म करके आए, वहां बहुत बड़े दो फंक्शनों के अंदर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के अंदर उनको परफॉर्म करने का मौका मिला, वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला, और अभी इंडिया गॉट टैलेंट जो मौजूदा आ रहा है कलर चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे, इसके अंदर भी उस टीम की सिलेक्शन हुई है, जल्दी आप उन्हें देखेंगे। तो ये भी बाबा की कृपा हुई ना, हम पर कृपा हुई हम यहां आ गए, उन पर कृपा हुई वो वहां चले गए। तो मैं युवा साथियों को एक चीज जरूर स्पेशली कहना चाहूंगा, गुरबानी के अंदर एक लाइन आती है, आप गवाइए ता सह पाइए, सह का मतलब परमात्मा है, आप गवाइए का मतलब है अपना अहम, अहम को अगर हम त्याग कर आएंगे तो परमात्मा को भी पाएंगे, सच्चे कलाकार भी बनेंगे, और वो जो ईश्वर जिस आध्यात्मिकता की ओर ले जाना चाहता है, हम उस आध्यात्मिकता के रास्ते के मुसाफिर भी बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और एक चीज और जरूर कीजिए, यह कहकर मैं अपना स्थान लूंगा, कि केवल अपनी कला तक सीमित ना रहिए, अपनी कला को समाज का हिस्सा बनाइए, अपनी कला को समाज की बेहतरी के लिए यूज कीजिए, अपनी कला में वो गुण पैदा कीजिए कि वो किसी की आंख के आंसू पहुंच सके, वो केवल जो है 2 मिनट के लिए तालियां बजाने का जो है माध्यम ना हो, वो केवल दो मिनट के लिए सीटी बजाने का माध्यम ना हो, वो किसी को रास्ता दिखाने का माध्यम हो, किसी को समाज के किसी ऐसे हिस्से को जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी बहुत जरूरी है, मुस्कुराहट लाने का कारण बने। ये बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं, बच्चे एक बार खड़े हो जाएंगे, एक बार खड़े हो जाएंगे, ये बच्चे निफा की, हम लोग बैठ जाएं बच्चे, हम लोग 5 क्लासें अभी चला रहे हैं। अभी मैंने अपनी सभी ब्रांचेस को, लगभग 14 राज्यों में जो ब्रांचें हैं, सभी ब्रांचों को बोल दिया कि हर ब्रांच कम से कम एक क्लास जरूर शुरू करे। ये बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, ये बच्चे छोटे छोटे कामों के अंदर बिजी थे, कोई डोमेस्टिक लेबर के तौर पर काम कर रहा था, कोई कूड़ा उठाने में, किस प्रकार के कामों में ये बच्चे जो है लगे हुए थे। इस समय लगभग 350 बच्चों को हम लोग रेगुलर एजुकेशन दे रहे हैं, और ये बच्चे जिनको रास्ते की दरकार थी आज कईयों को रास्ता दिखा रहे हैं। शाम को ये आपके सामने परफॉर्म करेंगे, शाम को आपके सामने परफॉर्म करेंगे। ये प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, लेकिन इनके परफॉर्मेंस को देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे चिंतन की भावना जरूर आएगी, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो मैं ये कलाकारों को कहना चाहूंगा, साथियों, अगर आपको परमात्मा ने कोई ऐसी ताकत दी है कि आप बहुत अच्छा नृत्य कर सकते हो, आप बहुत अच्छा गायन कर सकते हो, आप बहुत अच्छी कविता लिख सकते हो, आप बहुत अच्छे नाटककार बन सकते हो, आप बहुत अच्छे रंगकर्मी बन सकते हो, तो उस कला का इस्तेमाल जो है समाज की बेहतरी के लिए, समाज की भलाई के लिए कीजिए। क्योंकि किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पे खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पे खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत होता है जब इंसान किसी के काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत आभार, माफी चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि मैं ही लूजर हूं कि पिछले 2-3 दिन जो है वो मैं नहीं अटेंड कर पाया, क्योंकि कल हमारा कार्यक्रम था, एक आई ऑपरेशन कैंप था, एक करनाल जेल के अंदर, दीदी को बताना चाहूंगा, कुसुम दीदी जी को, कल करनाल जेल के अंदर हमने एक कंप्यूटर सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया है, ताकि जेल के कैदी जो है वो भी कंप्यूटर शिक्षा के साथ जुड़ सके। वो कार्यक्रम था जिसकी वजह से मैं पहले नहीं आ पाया, 2 दिन जो है वो यहां जो कुछ अध्यात्म की ब्यार बही है मैंने उसे मिस किया है। प्रयास करूंगा कि उसकी सीडी लेकर जो है उससे जरूर मैं जो है वंचित ना रह जाऊं, उससे जरूर मैं जुड़ूं। सभी कलाकार साथियों को बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, कितने सुंदर कार्यक्रम में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। यहां से जाइए, जाने के बाद कुछ ऐसा करके आइए अगली बार जो आप इस मंच से बता सकें कि हाँ, मैं बाबा के घर पे आया था और बाबा के घर से जो ईश्वरीय ज्ञान मुझे मिला था 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, आज मैं जब दोबारा आया हूं तो इन 6 महीने साल के अंदर मैंने अपने जीवन के अंदर यह परिवर्तन किया है और मैं समाज के अंदर यह परिवर्तन ला पाया हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स भ्राता प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, बहुत ही सुंदर विचार आपने हम सबको दिए। परमात्मा परमकार परम कलाकार हैं, ऐसा सुंदर उनके बारे में भी बताया। तो सचमुच उनके लिए कहा जाता कि आंख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, ऐसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है, सबका सर्जनहार, कौन वो विराट रचनाकार। तो वो रचनाकार परम कलाकार परम पिता परमात्मा। तो आपने कहा कि कलाकार सही में वही है जो उस परम कलाकार के साथ अपना संबंध रखता है और औरों का भी संबंध जुड़ाता है, और अपनी कला से सबका भला करना जिसको आता है वही कला सही माने में एक सच्ची कला है, सही कला है। वरना तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसकी कला के प्रदर्शन से तालियां बज जाना, या थोड़ी देर के लिए अल्पकाल की औरों को खुशी मिल जाना, यही होगा। लेकिन स्थायी सच्ची खुशी मिलना, औरों के जीवन में परिवर्तन आना, मूल्यों का समावेश होना, जीवन में दिव्यीकरण आना, यही है सच्ची कला। तो बहुत ही सुंदर विचार आपने हम सबके समक्ष रखे, पुनः जोरदार तालियों से आदरणीय भाई साहब का सब धन्यवाद करेंगे। और अब मैं अनुरोध करती हूँ भ्राता प्रभंजय चतुर्वेदी जी, हमारे बीच में आप भिलाई से पधारे हैं, आप कला और गला के धनी हैं। भ्राता प्रभंज्य चतुर्वेदी जी, आप पर सुप्रसिद्ध भजन व गजल गायक हैं। कल आप सभी ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भ्राता जी की देखी सुनी। गायन के द्वारा आपने सबके मन के तार परमात्मा के साथ जोड़ दिए। आपको स्वश्री संगीत भूषण, अभिनव कला सम्मान, महाकाल संगीत रत्न, अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया है। आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आप अपने दिल की भावनाएं और अपने मनोभाव हम सबके समक्ष रखेंगे। भ्राता प्रभंजय चतुर्वेदी जी फ्रॉम भिलाई।
ठीक, ओम शांति। मुझे यहां पर आमंत्रित किया, मुझे बोलना तो बहुत कम आता है, गाना ज्यादा आता है, जो मैं कल कर चुका हूं। आप लोगों ने सुना, आनंद लिया होगा। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय करुणा भाई जी, श्रद्धेय दयाल भाई जी, आदरणीय कुसुम बहन जी, भाई प्रीतपाल जी, बहन मोनिका जी, भाई अनिल जी, भाई चक्रेश जी, बहन नेहा जी और बहन प्रेम जी, मुझे यहां पर कुछ बोलने के लिए कहा गया तो मेरी जो भी बातें थी वो तो प्रीतपाल भाई सब कह गए, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। इतना अच्छा उन्होंने समझाया कला और कलाकारों के बारे में। उन्होंने एक जो बात कही कि कोई भी कलाकार इस परिसर के अंदर आए तो अपने अहम को, अपने ईगो को छोड़कर आए, उसको त्याग कर तज कर आए। तो प्रीतपाल जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस परिसर में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि जिस कलाकार के अंदर अहम होगा वो यहां प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। वो तो प्रवेश करते साथ ही वो जो आपका गेट है वहीं पर समाप्त हो जाता है और यहां पर वो एक प्रशिक्षु, एक ट्रेनी, एक छात्र बनकर प्रवेश करता है। और ऐसा ही हम लोगों ने भी जब कल यहां पर प्रवेश किया, हमारे सारे कलाकारों ने ऐसा ही अनुभव किया और हम लोग अभी तक वैसा ही अनुभव करते आ रहे हैं। यूं तो हम कलाकारों की जिंदगी बहुत ही आम लोगों से भिन्न होती है, लेकिन यहां आकर हम लोगों ने थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया और उस 24 घंटे में हमें ये लगा कि हम वाकई जो इतने देर तक सोते रहते हैं, हमें सुबह उठकर कुछ करना चाहिए। यदि हमको चाय चाहिए जल्दी से तो हमें जल्दी उठना पड़ेगा। तो यदि आपको कुछ जीवन में चाहिए तो कुछ चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ आपकी जो बुरी आदतें हैं, जो हम लोगों ने, जैसे कि प्रीतपाल जी ने बताया कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी सभ्यता को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ये बहुत ही सही बात है और जो ये विषय है आध्यात्मिकता, कला और कलाकारों का दिव्यीकरण, जो हमारी भारतीय जो कला है, मैं समझता हूं कि विश्व की सबसे महानतम और सबसे प्राचीन कला भारत में है, जिसके सभी लोग इसको मानते हैं और इसको पूछते हैं। उसका दिव्यीकरण आपने जो टॉपिक रखा है, इसका कलाकारों के लिए बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हम लोग भी यहां पर आए हैं, इसका अनुभव महसूस कर रहे हैं और प्रीतपाल जी ने जो कहा कि कलाकारों का और कला का जो पतन हो रहा है उससे मैं बहुत पूरी तरह सहमत हूं। हम जो अपनी जो कला है, भारतीय कला, उसे भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मुझे एक कोटेशन याद आता है कि सूर्य जब कभी पश्चिम में गया है तो वो डूबा ही है। सूर्य जब कभी पश्चिम की ओर गया तो वो डूबा ही है और जब कभी पूर्व की ओर गया तो उसका उदय हुआ है। तो हमें किस ओर जाना है, ये आप लोग सोचें कि हमें उदय करना है या डूबना है, और बहुत कुछ तो मुझे कहना आता नहीं। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग बहुत सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। तो कल मैं एक गीत जो यहां पर गाना चाहता था, समय अभाव के कारण नहीं गा पाया, उसकी दो पंक्तियां आपको सुनाऊं। मैं हर जगह ये गीत प्रस्तुत करता हूं कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी मुझे मालूम था कि ये फरमाइश आएगी। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स भ्राता प्रभंजे चतुर्वेदी जी, बहुत ही सुंदर विचार और सुंदर एक्सपीरियंस आपने हम सबके साथ शेयर किया। और भी खुशी की बात आपको यहां आकर मिली होगी कि अब सिर्फ इंसान को इंसान नहीं, लेकिन इंसान से देवता, मनुष्य से देवता, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहां पर मानव को देव बनाने की शिक्षा स्वयं परम शिक्षक परम पिता परमात्मा हम सब बच्चों को दे रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी भूमिका देशमुख, शुजालपुर एमपी से आई हैं, तांडव नृत्य दिखाएंगी हम सबको भूमिका देशमुख। मैं आमंत्रित करती हूं बहन मोनिका पटेल जी। आप पिछले 10 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं। आपकी फिल्म एक्सक्यूज मी, टाइम पास, 1920 द इविल रिटर्न, आपकी आने वाली फिल्म न्यू एप्पल, ऑपरेशन ग्रीन हंट, और आपने बहुत सारे सीरियल्स भी किए हैं, चिड़ियाघर, ये कैसा इश्क है, लापतागंज, और आपको इस ईश्वरीय ज्ञान में आप पिछले 5 साल से चल रहे हैं। कल भी आपका तैयार कराया हुआ ड्रामा सपनों की उड़ान आप सबने देखा। हर वर्ष एक बहुत सुंदर ड्रामा जो कि सबको बहुत ही प्रेरणा देने वाला, परमात्मा से जोड़ने वाला और दिव्यीकरण करने वाला ड्रामा आप तैयार करके लेकर के आते हैं। और आप पिछले वर्ष अक्टूबर में जब निफा का कार्यक्रम हुआ तो आपको भी करनाल हमारे पनु भाई साहब ने आमंत्रित किया था, तो आप भी करनाल आए, वहां आपने पार्टिसिपेट किया। लेकिन हमने ये देखा कि आप एक इतनी बड़ी अभिनेता होते हुए भी इतनी विनम्र, क्योंकि ज्ञान का ये असर है, तो इतनी विनम्रता, इतनी मधुरता, इतनी हर्षित मुक्ता, इतने मिलनसार, हमको ऐसा ही अनुभव हुआ कि हमारी छोटी सी प्यारी सी बहन हमारे पास आई है। इतना अच्छा लगा आपको देखकर, और मैं समझती हूँ कि इस बार फिर हम जरूर चाहेंगे कि आप आए, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ बहन मोनिका पटेल जी को। आप सभी जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत करेंगे।
ओम शांति। आवाज नहीं आई। ओम शांति। ओम शांति। मैं सभी अतिथिगण जो उपस्थित हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और जितने भी जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उन सबका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ ईमानदारी से, आज से जो मैं 5 साल पहले आई थी ना, तो मेरी ये टोन नहीं थी। मेरा जो है, मैं इतना मतलब चुलबुलापन था मेरे अंदर, और जब मैं बोलना शुरू करती थी तो मैं रुकती ही नहीं थी। हमारी जो प्यारी कुसुम दीदी हैं, जो हमारी राजयोगिनी दीदी हैं, हमारे दयाल भाई हैं, इनसे मुझे बहुत पालना मिली है, शिक्षाएं मिली हैं, और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। और दयाल भाई से मुझे एक शिकायत है, दयाल भाई कहाँ हैं आप, नजर नहीं आ रहे। दयाल भाई हर साल मेरा एक कम कर देते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई, इतनी देर मुझे क्यों लगी यहाँ आने के लिए। मैं साल गिनती हूँ कि अच्छा शुक्र है 4 साल हुए, 5 साल हुए, मुझे फील होता है, प्राउड होता है अपने आप को कहने में कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। और दयाल भाई जो है हर साल मेरा एक कम कर देते हैं, हमेशा कम बताते हैं ये। चलिए जोक्स अपार्ट, तो मेरा तो ये घर है, इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है हमारे वडिलों ने जो है ऑलरेडी बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं आपसे जो है अपने पर्सनल अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी, मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी। मुझे लगता है शायद आप में से सभी, काफी सारे लोग जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए होंगे, पहली बार आए होंगे। जरा हाथ खड़ा करें, जरा मुझे पता तो चले। वेरी गुड। तो जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे पता नहीं था, बस सिर्फ शिवानी जो बहन है उनका मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा था कि हाँ ब्रह्मा कुमारी कुछ है ऐसा करके। हम इनका चलो ठीक है, घूमने के लिए मैं आती हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ पर शायद पिकनिक बनाने ही आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाबा जो है मुझे पकड़ लेंगे और माँ बाबा को इतना इतना जो है कसकर पकड़ लेंगे कि दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे याद है कि मैंने पहली बार जो है लेटर लिखा था, मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ पर अगर आप लेटर लिखो बाबा को तो आपको उसको जवाब मिलता है। सो आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एज ऑफ 13, सो आई डोंट हैव ए पेरेंट्स एक्चुअली। और यकीन मानो जब मैंने बाबा की कुटिया में जाके लेटर लिखा तो उस वक्त में मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि मुझे अपने लौकिक पेरेंट्स याद आ रहे थे। उस वक्त सडनली एक क्वेश्चन मेरे मन में आया था, वो क्वेश्चन ये था, वेयर इज माई फैमिली। आई आस्ट बाबा that time, I just wrote a letter to Baba and only asked that question, where is my family? और जब मैं यहाँ से जाने लगी तो दयाल भाई को तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से पता है कि सडनली जस्ट जब मैं जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं क्यों जा रही हूँ यहाँ से, ये सब कुछ छोड़ के मैं क्यों जा रही हूँ, ये तो सब मेरे अपने हैं, ये जगह तो मेरी है, ये पहचानी हुई है, आई जस्ट बिलोंग टू दिस फैमिली ओनली एंड हेयर इज माई फैमिली। और मैंने इतना रोना शुरू कर दिया, दयाल जी तो घबरा गए कि क्या हो गया इस लड़की को। और वो दिन था और आज का दिन है। फिर उसके बाद मैं यहाँ आई, फिर मैंने ज्ञान लिया। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने ज्ञान भी नहीं लिया था, फिर तुरंत मैंने ज्ञान लिया, लेकिन तब भी मेरे अंदर इतनी धारणाएं नहीं आई थी। लेकिन हमारी जो दीदी हैं जिनसे मुझे बहुत पालना मिली, और मैं समझती हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस पर्सनालिटी को चेंज करने में, और इस चीज के लिए चाहे वो होती भी है या नहीं होती है, और मैं उनका हमेशा दिल से धन्यवाद करती हूँ और करती रहूंगी कि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हूँ। तो करनाल जाने का जो है, उन्होंने बोला कि भी ऐसे हमारी आर्ट एंड कल्चर विंग की एक कॉन्फ्रेंस है, आप चलेंगे वहां पर हम लोगों का जो है वहां पर। मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगी। तो मैं 10-15 दिन जो है बीके बहनों के साथ रही। उसे कहा जाता है कि संग का रंग कैसे लगता है, तो वो जो रंग जो मुझे लगा वहां से, जो मैं साथ में रही, जो 10 दिन जो मैंने गुजारे बहनों के साथ, उनका मैंने बिहेवियर देखा, उनका मैंने एटीट्यूड देखा, उनकी पालनाएं देखी, किस तरह से वो बात करते। मैंने अभी आपको शुरू में बोला कि जब मैं ऐसी नहीं थी, मैं जब माइक पर आती थी तो मैं बहुत हंसती रहती थी और मेरे अंदर इतना चुलबुलापन होता था, इतना कि मतलब बातें मैं कम करती थी, मैं हंसती ज्यादा थी। लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद हर चीज के अंदर कैसे आपको बिहेव करना है, किस तरह से आपको जो है वो ज्ञान इतना परफेक्ट है कि आपको वो सब कुछ आपको बाहर जाने की, कहीं जाने की, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली सारी धारणाएं आपके अंदर आ जाती हैं, सारी समझ आपके अंदर आ जाती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जिन्होंने ये योग नहीं किया है, प्लीज आप जाके ये सहज राजयोग जरूर कीजिएगा और आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर किस तरह का परिवर्तन आया है जो मेरे अंदर आया है। कि आपको कहीं से भी लग रहा है कि मैं यहाँ पर जो है एक टीवी एक्ट्रेस या आपके सामने या कोई फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस खड़ी हुई हूँ और मुझे वो टैग चाहिए भी नहीं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम अ ब्रह्मा कुमारी रियली। मैं सबसे पहले जब मैं शूट पर भी जाती हूँ, मैं सबसे पहले अपना बैच लगाती हूँ, वो मेरा प्राउड है, वो मेरा सम्मान है। फिर अगेन मेरे को एक शिकायत याद आ रही है दयाल भाई से, जब मैं पहली बार आई थी ना तो मैं देखती थी, जब मैं 10 दिन जब दयाल भाई थे, हमारी नेहा दीदी थी और सब बहनों को मैं देखती थी कि ये बैच लगाते थे, तो मैंने कहा ये बैच तो बड़ा अच्छा है, मुझे भी लगाना है ये बैच। तो मैंने दयाल जी से बोला, मैंने कहा दयाल भाई मुझे आप एक बैच दो ना, तो इन्होंने बड़े प्यार से जो है मुझे बैच दिया, बैच तो दे दिया। लेकिन इन्होंने एक बात मुझसे कही, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लगा सकते। कहा कैसे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, ये बैच तो मुझे पहनना है। दयाल भाई ने सिर्फ यही बात की थी कि आप इसको ऐसे नहीं लगा सकते। आई डिडंट आस्क अ सेकंड क्वेश्चन व्हाई, आई डिडंट आस्क। लेकिन जो उन्होंने कहा था, जो गहराई, जिस गहराई से उन्होंने मुझे वो बात कही थी, वो मुझे छू गई। क्योंकि ये जो है, ये परमात्मा का जो दिया हुआ जो एक, जो हमारे लिए एक सम्मान है कि धारणाएं क्या होती हैं, आपको कैसा संग में रहना है, आपको संग का रंग नहीं लगना है आपको। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि ये बैच तो मुझे पहनना है। और वहां से आने के बाद जब मैं अगरतला गई थी, 10 दिन का वो और रंग तो मुझे लग ही चुका था, हमारी जो दीदियां हैं उन सबका रंग मुझे लग चुका था। और मुझे लगता है कि वहां से आने के बाद ही मेरे अंदर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेरे अंदर आया था, जिसके लिए मैं सभी का, जो हमारी जो वरिष्ठ भ्राता हैं, वरिष्ठ दीदियां हैं सबका, हमारे रमेश भाई जी का, जो मुझे आज सेवा करने का मुझे मौका दे रहे हैं कि जिसके थ्रू जो है मैं नए नए ड्रामा लेकर आती हूँ, नए लोगों को लेकर आती हूँ। और जो है एक कला के, जैसे कि कलाकार का एक फर्ज होता है कि वो अपने कला के माध्यम से समाज का भला करे, अपना नहीं औरों को रास्ता दिखाए, औरों को रास्ता बताए। तो मैं भी यही चाहूंगी कि मेरी तरह जब मैं पहली बार यहां पर आई थी ना, तो मैं पहली बार इस स्टेज पे दौड़ के चढ़ गई थी और मैंने तभी वादा कर लिया था और उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि मैं वादा करती हूं कि मैं यहां से बहुत सेवा करूंगी। पहली बार मुझे कुछ भी नहीं पता था लेकिन मैं स्टेज पे चढ़ गई थी और मैंने वो वादा निभाया और मैं निभाऊंगी और आगे भी बहुत सारी सेवाएं मैं देती रहूंगी। ओम शांति।
बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हमारी बहन मोनिका पटेल जी ने आपको सुनाया। सभी करतल ध्वनि से धन्यवाद करेंगे बहन जी का। दिल को छू लेने वाला एक्सपीरियंस आपने हम सबसे शेयर किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता चक्रेश जी फ्रॉम चंडीगढ़। आप नाटक के अभिनेता और निर्देशक हैं, आप भी अपना अनुभव हम सबसे शेयर करेंगे। भ्राता चक्रेश जी।
ओम शांति। इतना कुछ कहा जा चुका है लेकिन मैं पहले से कुछ लेकर आया था, लिखकर लेके आया था, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसे कम से कम पढ़ दूं। आध्यात्म, ध्यान, कंसंट्रेशन, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए अति आवश्यक तत्व। जीवन एक भंग मंच है जिसमें अलग अलग लम्हों के रंगों को भावनाओं के सूत्र में पिरोकर या एक सूत्र के माध्यम से क्रमबद्ध किया जाए तथा किसी विशिष्ट मंच पर प्रस्तुत किया जाए या उन्हें अति सार्वजनिक कर दोबारा जिंदगी के बीच घोल दिया जाए, तो वो रंगों से भरी हुई जिंदगी यथार्थ से निकलकर रंगमंच में तब्दील हो जाती है। रंगमंच या किसी भी कला की बात करें तो उसके सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता हमें साथ में जीना सिखाती है और संस्कृति सूत्रबंध हमें प्रकृति से जोड़ती है, जिसमें एक अहम भूमिका निभाता है धर्म, जो आस्था, विश्वास और रिश्तों का ऐसा समन्वय है जो किसी भी सभ्यता और संस्कृति के पनपने से उसके चरम तक उसके साथ मूल तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। कला के क्षेत्र में आपका अच्छा या बुरा कार्य सब निर्भर करता है आपकी सोच पर या कार्य करने की वजह पर। क्षमता तो सब में होती है, पर वजह और सोच न हो तो क्षमता किस काम की। सोच चाहे कोई भी हो, समाजवादी, गांधीवादी, जनवादी, मानववादी या साम्यवादी, किसी भी विचारधारा को आप तब मान सकते हैं जब आप उन पे पूरी तरह विश्वास रखे हों या पूर्णतः आपका ध्यान उसी वाद या अपवाद पर केंद्रित हो। उसी तरह जब हम वादी अपवादी धाराओं को छोड़ जब आत्म साक्षात्कार के जरिए कार्य करने के लिए उतरते हैं तो कुछ कलात्मक या नया रचनात्मक करने के लिए, तब संभवतः है हम सभी वाद अपवादों को छोड़ आत्मवाद तक पहुंच सकें। रंगमंच या कला यही कहानी करती है। जब कोई भी कलाकार किसी भी विशिष्ट सोच से प्रभावित न होकर एक धारा प्रवाह में जब आत्मवाद से साक्षात्कार हो, ये तय करे कि मैं इस कला के क्षेत्र में तमाम कार्य जो हो चुके हैं उन्हें देखते या समझते हुए खुद नया सृजनात्मक क्या करना चाहता हूं, तब कहीं उसके अंतह से उसे जवाब मिलता है कि मैं क्या करना चाहता हूं या मुझे क्या नया सृजना है। वैसे सब कुछ निर्भर करता है किसी भी व्यक्ति की निष्ठा पर, और सीधे शब्दों में कहूं तो सच्चे मन से किया गया कार्य कभी अशुद्ध या अपूर्ण नहीं होता, चाहे जीवन हो या कला का कोई भी पक्ष, यानी मूर्ति कला, हस्तकला, अभिनय कला, नृत्य कला, संगीत कला इत्यादि। इन्हीं शब्दों के साथ अंत की ओर बढ़ते हुए मैं पूर्ण तरह से खंडन करना चाहता हूं उस सोच का जो निजी फायदे के लिए कला का इस्तेमाल करते हैं, जैसे राजनीतिक प्रचार करना, धार्मिक पुनरुत्थान का स्वप्न दिखाना और पैसों के लिए अपनी मर्यादा छोड़ अश्लीलता पर उतर आना। इस आध्यात्मिकता द्वारा कला एवं कलाकारों का दिव्यकरण के कार्यक्रम से जुड़ने की वजह रही वैशाली बहन जो पीछे बैठी हैं और अरविंदर भाई, जब चंडीगढ़ में आप लोग मिले तो एक अजीब दूरी बनी रही क्योंकि हम नए नाटक के साथ 6 दिनों के महोत्सव की तैयारी में लगे हुए थे, तो समय ही नहीं निकल रहा था कि 15 से 10 मिनट बैठकर थोड़ी सी बात की जा सके। यहां तक कि एक रोज दोनों लोग हमारे पास रिहर्सल स्पेस में भी पहुंचे लेकिन 5 मिनट ही बात हो पाई इस 45 मिनट के सफर में। खैर, दोनों लोगों ने बड़े मन से हमें कार्यक्रम समझाने की कोशिश की लेकिन आपकी पूरी बात यहां माउंट आबू पहुंचकर पता चली, महसूस कर पाए, समझ पाए। दरअसल मेरी एक आदत है, जब से होश संभाला है तब से किसी भी एक विचारधारा को नहीं बल्कि आत्मवाद को मानता हूं, लेकिन प्रत्येक विचारधारा को समझना अपना कर्तव्य फर्ज जरूर समझता हूं। चंडीगढ़ में कार्यरत जब मैं अपनी संस्था अलंकार थिएटर में कार्य करता हूं तो कलाकारों को अक्सर एक बात कहता हूं कि अच्छा कलाकार बनो चाहे ना बनो, लेकिन अच्छा इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अच्छे इंसान के भीतर एक अच्छा कलाकार पनपता है, लेकिन अंदरूनी कपट न अच्छा इंसान बना पाता है न कलाकार। वैसे जब कभी कार्य करते करते कोई भी कलाकार या अभिनेता अटक जाता है जिसकी वजह उसका निजी स्वार्थ भाव होता है, जैसे ये मेरी पेंटिंग है उससे तो बेहतर ही है, ये मेरा स्कल्पचर है उसके स्कल्पचर तो कुछ भी नहीं, अरे उसकी फिल्म तो कुछ भी नहीं है मेरी फिल्म आने दो, अरे यार मेरा अभिनय, मेरा कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होना चाहिए उसके कैरेक्टर से, तो ऐसे में हम उसे दोबारा ध्यान के जरिए मैं से हम पर ला सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है आई एम द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, यस वी आर द बेस्ट, यानी बार बार उसे एक ही चीज समझाई जाए कि स्वयं वृद्धि और आत्म विकास या आत्म प्रकाश चाहते हो तो अपने से पहले दूसरों का सोचो। इसी तरह जब अरविंदर भाई और वैशाली बहन हमारे पास आए तो यही चीज मुझ पर लागू हुई। हमें यह महसूस हुआ कि ये कोई धर्म नहीं, ये तो विचारधारा लेकर आए हैं, इसीलिए मैं और मेरा परिवार यहां तक खींचे चले आए। कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक हम खुले दिमाग, साफ मन और सीखने की लालसा को अपने अंदर जागृत न कर लें। और जहां तक सवाल है आध्यात्म का, तो मुझे लगता है कि अभिनय प्रशिक्षण में आज तक हमने अपनी संस्था में आध्यात्म के बगैर कोई कार्य नहीं किया, और अगर इक्का दुक्का शुरुआत में कोशिश भी की होगी तो विफल ही रही होगी। खैर, अब ये बात मेरे लिए उतनी सार्थक नहीं रहती इस पड़ाव पर आकर कि आध्यात्म के जरिए क्या कलाकार अपनी कला को बेहतर बना सकता है। तो जवाब एक ही है, हाँ, हाँ, जी हाँ। अंततः आज के वक्त में जहां कला के जरिए तमाम संस्थाएं अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के स्वप्न देखती हैं, वहां ऐसी संस्था का उभरना जो कला को कला समझे तथा कला को कला के लिए और कला को समाज के लिए कार्य करने के लिए कलाकारों को प्रोत्साहित करती हो। ये बड़ी बात होगी। यहां आप मेरा पक्ष समझने की कोशिश करें कि कला को कला के लिए, अगर हम देखें अभी जो बच्ची ने तांडव किया, उस तांडव में जो एक बिजली सी कौंधी लाइटिंग के जरिए, या फिर जो एक नीला सा माहौल बना, या जब हम आध्यात्म करते हैं तो एक लाल रोशनी छा जाती है हम पर, आसानी होती है उस माहौल में अपने आप को जोड़ने की। इसीलिए मैंने ये कहा कि कला को कला के लिए तथा कला को समाज के लिए, बिना समाज के कला व्यर्थ है। अंत में मैं तमाम कलाकार विभूतियों तथा नव अंकुरित कला बीजों की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे ब्रह्मा कुमारी संस्था का इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि एक कदम तुमने बढ़ाया, एक कदम हमने, चलो अब मिलकर साथ चलें। धन्यवाद।
बहुत बहुत थैंक्स भ्राता चक्रेश जी, बहुत ही सुंदर विचार आपने हम सबको दिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता बी के राजयोगी सतीश भाई जी, जो कि मुख्यालय पांडव भवन माउंट आबू में बहुत लंबे अरसे से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। बाबा ने आपको ये बहुत सुंदर कला दी है, गला भी दिया है, बहुत सुंदर गीत आप बनाते हैं, स्वयं लिखते हैं और फिर उनको गाते भी हैं। मैं समझती हूँ 5000 से अधिक गीत आपने खुद बनाए हैं, जो अलग अलग सिंगर्स ने गाए भी हैं और आपने खुद भी गाए हैं। तो ऐसी सुंदर कला के धनी हमारे आदरणीय भ्राता सतीश भाई जी, आज हम उनसे सुंदर विचार सुनेंगे।
ओम शांति। सभी हमारे साथ कहें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप समझ गए हो क्यों आपसे बुलवा रहा हूं। माननीय मंच और परम कलाकार प्यारे शिव बाबा की प्यारी संतानों, मंच पर विराजित हमारे मूर्धन्य विशिष्ट वक्तागण और सन्मुख विराजित आप सब कलाकार, मैं अपना विचार व्यक्त करने तो नहीं आया हूं, लेकिन आज इस सम्मेलन का प्रस्ताव आपके सम्मुख रख रहा हूं। आप पिछले 3-4 दिनों से यहां पर मौजूद हैं, और जैसा कि आप सबने अपने अनुभव में कहा कि यहां पहुंचने के बाद वो जो फीलिंग्स हैं, जो संवेदनाएं हैं, जो ईश्वरीय परिवार में आने की और आध्यात्मिकता का रसास्वादन करने का जो ये मौका मिला है, ये वास्तव में अपने में बहुत बड़े सौभाग्य का प्रतीक है जिसके लिए यहां पर आप आए हैं। मैं कहना चाहूंगा प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, बहुत थोड़ी संख्या है हमारे पास, लेकिन आप में से एक एक बहुत ही अमूल्य है इस ईश्वरीय योजना को आगे बढ़ाने के लिए। अब तक हम सुने और अभी गुने और गुने गुण करके उसको जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को दिव्य बनाना है, क्योंकि आध्यात्मिकता की एक सबसे बड़ी रूपरेखा ये है कि आध्यात्मिकता वो अंतर दर्शन कराती है, अंतर यात्रा कराती है, अंतर के गुणावगुणों को देखने का, अपनी शक्तियों को पहचानने का और परमात्मा से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। वही चीज अब यहां पर है, ये भाषण का विषय नहीं है, ये तो यहां पर विषय है अपने चरित्र निर्माण की विषय है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषण से वादों नारों से, राष्ट्र नहीं बनता कोरे भाषण से वादों नारों से, राष्ट्र नहीं बनता ऊंचे मंदिर मस्जिद मीनारों से, और राष्ट्र नहीं बनता उद्योगों व्यापारों से या हथियारों तलवारों से, राष्ट्र तो बनता है अपनी जनता के आचार विचारों से, राष्ट्र तो बनता है अपनी जनता के आचार विचारों से, जनता के आचार विचारों से। प्यारे साथियों, आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक प्रारंभिक बीज बोया गया था, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते ही रहे और कारवां बनता गया। ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा शिव बाबा के ज्ञान को आत्मसात करके जीवन से लिया और देखते ही देखते आज सारे विश्व के 140 से अधिक देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहने सारे संसार को परमात्मा अवतरण का संदेश दे रहे हैं। आज हम सब कलाकार इस ज्ञान को स्वयं में धारण करके इस बहती गंगा में हाथ धोने का अवसर मिला है, कुछ और नहीं। जैसा हमारे माननीय पन्नू भाई ने कहा और सबने समर्थन किया कि इस जगह पर आने के बाद हमारा जो सर है वो अंदर में हो जाए परमात्मा के, इसी को सरेंडर कहते हैं। आज हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हजारों बहनें और हजारों ब्रह्मा कुमार, यूं कहिए लाखों लाख हैं जो घर बार में रहते पवित्र और निर्मल जीवन जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सारे संसार की आंखें खुलनी चाहिए कि आखिर इसका कार्य करने वाला कौन है, किसने इन सबको एकत्रित किया है, वो कौन चला रहा है, किसने आमंत्रित किया है, कौन इन मूर्तियों को बना रहा है, कौन देवता बना रहा है मनुष्यों को, मनुष्य जो दानव जैसे बन गया है उसको देवता बनाने वाला कौन है, उसको देखें, उसको समझें। और आज हम सब संकल्प करें कि हम सब अपने जीवन का परिवर्तन करके इस बहती गंगा में हाथ धोएंगे और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। प्यारे साथियों, आपके हाथ में एक प्रस्तावना आ गई है। आज सम्मेलन के अंतिम दिन पर, कल भी यूं तो हमारा पूरा हो रहा है, लेकिन आज हम सब मिलकर जो अभी तक सुने हैं उसको ये मानकर कि ये परमात्मा का प्रसाद मुझे मिला है और इस ईश्वरीय योजना में मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूं, उसके लिए एक दृढ़ संकल्प करेंगे, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि अपने जीवन को हम जरूर लाएंगे अपने पास, अपने जीवन में। तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। सांस्कृतिक सम्मेलन में पारित प्रस्ताव प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर परिसर में 1 से 5 मई 2015 तक आध्यात्मिकता द्वारा कला एवं कलाकारों का दिव्यीकरण विषय पर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सारे देश के लगभग 450 कलाकारों ने भाग लिया। आध्यात्मिकता द्वारा कला एवं कलाकारों का दिव्यीकरण विषय के अंतर्गत विद्वत जनों एवं अनुभवी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वर्तमान भारतीय संस्कृति की दशा एवं दिशा बदलने के लिए तथा कला एवं कलाकारों का दिव्यीकरण हेतु सभी कलाकारों ने विभिन्न संगोष्ठियों में गहन विचार विमर्श किए। आज 4 मई 2015 के स्वागत समापन सत्र में कलाकारों का दिव्यीकरण हेतु ईश्वरीय योजना को मूर्त रूप देने के लिए हम सभी कलाकार संकल्प लेते हैं। मैं अनुरोध करूंगा मंचासीन अपने महानुभावों को, वो भी खड़े हो जाएं और आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि ये विषय केवल बोलने का नहीं है, लेकिन आज संवेद स्वरों में हम सब संकल्प करेंगे कि हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं। आप अपने हाथ को यूं आगे बढ़ाएंगे, एक हाथ दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं, और संकल्प करेंगे जो मैं दोहराता हूं उसको आप हमारे साथ अवश्य दोहराएंगे। आध्यात्मिकता में ही स्वयं का एवं सर्व समस्याओं का हल है, अतः हम सभी मन वचन कर्म से आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों को अपनाएंगे। आंतरिक शांति एवं शक्ति की अनुभूति के लिए प्रतिदिन प्रातः कम से कम 10 मिनट राजयोग ध्यान करेंगे। सद्भावना निर्माण के लिए हम परस्पर स्नेह सम्मान युक्त व्यवहार करेंगे, कभी क्रोध नहीं करेंगे, कभी क्रोध नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। जरा जोरदार शब्दों में कहें, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। कला एवं कलाकारों के दिव्यीकरण हेतु ईश्वरीय कार्य में दैवी गुणों जैसे सत्य, अहिंसा, पवित्रता, मधुरता, सत्यता, सहनशीलता को धारण करेंगे और इसके लिए नित्य ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करेंगे। योम राजयोग के अभ्यास से जीवन को दिव्य बनाएंगे और अंत में आज के दुर्व्यसनों, बुराइयों एवं कुरीतियों से स्वयं को मुक्त करके मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तालियों के साथ अपना अभिनंदन स्वीकार करें। प्यारे साथियों, आज जो आपने संकल्प किया, ये बात जब हम इस बात को कॉन्फ्रेंस को रखने जा रहे थे और ये जो धारणा किया कि सम्मेलन का प्रस्ताव बनाया जाए, तो हमारे कुछ एक भाइयों ने कहा कि हम संकल्प तो कर लेते हैं लेकिन उसका फॉलोअप कितना कर पाते हैं, इसलिए संकल्प में दृढ़ संकल्प जोड़ा गया है। आप सबने यहां संकल्प किया। आप ये मत समझना कि मैं अकेले क्या करूंगा, आप एक एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक छोटी सी लघु कथा है कविता में, मैं उसको सुनाकर अपनी बात को पूरा करता हूं कि प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप यहां पर आए, हो सकता है आपके मन में बहुतों भी प्रश्नों का गुबार उठ रहा होगा। ढेर सारे भाई बहने आज हमसे कह रहे थे, कल कह रहे थे, भाई हमें कुछ पूछना था। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि प्यारे भाइयों और बहनों, अभी तो आप सागर किनारे तैरने के लिए उतरे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप धीरज रखिए, सब कुछ मिलेगा आपको। आप केवल यहां से राजयोग का अभ्यास करने के लिए सेवा केंद्र से संलग्न होंगे, संबद्ध होंगे। आप एक एक का कंट्रीब्यूशन इस दैवी विश्व निर्माण की जो ईश्वरीय योजना है, इसमें बड़ा अमूल्य आ सकती है। थोड़े से लोग यहां पर आए हैं, जो भी आए हो ये समझ लें कि हमें विश्व को परिवर्तन करने के लिए आत्म परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आत्म परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, दृष्टि परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन होगी और संस्कार परिवर्तन से संस्कार का परिवर्तन होगा और संसार का परिवर्तन होगा। इसलिए प्यारे साथियों, एक बार एक तालाब किनारे एक इमारत में लगी आग, एक बार तालाब किनारे एक इमारत में लगी आग, लोगों में मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जिसे जो हो सकता था, किसी ने आग पर पानी डाला, किसी ने आग में घिरे हुए लोगों को बाहर निकाला, सबने वो किया जिससे जो हो सकता था। वहीं पर एक थी चिड़िया रानी, भर रही थी चोंच में पानी, डाल रही थी आग पर पानी, देख रहा था कौवा भी वहीं पेड़ पर। बोला, चिड़िया बहन तू क्या करती है? अरे तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बाढ़ से पहाड़ को तोल रही है। तेरे चोंच भर पानी से आग तो क्या एक आग का शोला भी नहीं बुझ पाएगा? चिड़िया ने बोला, बिल्कुल लाजवाब भैया, मैं तेरी बात को जानती हूं, मानती भी हूं, और अपने चोंच भर पाने की क्षमता को भी पहचानती हूं, पर इतना जानती हूं जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं और आग लगा हुआ देखने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में शान से लिखा जाएगा, शान से लिखा जाएगा, शान से लिखा जाएगा। ओम।
बहुत बहुत थैंक्स भ्राता सतीश जी, बहुत सुंदर विचार भी दिए, सबसे प्रतिज्ञा भी कराई और साथ ही साथ एक सुंदर छोटी सी स्टोरी से आपने सबको प्रेरणा भी दी। थैंक्स, सभी ताली बजाकर के धन्यवाद करेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी। ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी, आप मुंबई से हैं, आपने ये ईश्वरीय ज्ञान, इस ईश्वरीय ज्ञान में 1991 से आप समर्पित हैं। वर्तमान समय आप मुंबई के गांव देवी सब जोन की संचालिका हैं, आर्ट एंड कल्चर विंग के मुंबई जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप अपने दिव्य बोल से हम सभी की बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्न से भरपूर भी करेंगे, लेकिन लंबे समय से हम विचार सुन रहे हैं सभी के, सुंदर सुंदर विचार, लेकिन अब हम मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा समय के लिए साइलेंस का अनुभव करेंगे, परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि की तार जोड़ेंगे। और अगर हमारे डेविड भाई जी यहाँ उपस्थित हैं, तो जब बहन जी मेडिटेशन कराएंगे तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, सुंदर धुन निकालेंगे, हम सभी उस पर योग करेंगे।
ओम शांति। परम कलाकार परमात्मा पिता के अमूल्य रत्न, मंच पर विराजित सर्व महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर आध्यात्मिक बातें हम सुन रहे थे। कलाकार को अपने जीवन का दिव्यकरण करके समाज का दिव्यकरण करना, इस महान कार्य को पूर्ण करने के लिए जो दिव्य शक्तियां चाहिए, जिन शक्तियों के द्वारा हम स्वयं को भी संतुष्ट बना सके और सारे समाज को भी हम अपना उत्तम योगदान दे सके, इसके लिए जो खजाना चाहिए वो है हमारे भीतर। जैसे भाई साहब ने भी कहा था कि वो दिव्य शक्ति परमात्मा ने हमारे मन के भीतर रखी हुई है और वही दिव्य शक्तियों को हमें बाहर निकालना है, जिसको हम यहाँ कहते हैं राजयोग का अभ्यास। ये राजयोग एक ऐसी दिव्य मिलन की अनुभूति की प्रक्रिया है कि जिसमें हम स्वयं के मन को अपने उस परम पिता परम शक्ति के साथ जोड़ते हैं, जिसमें हमें अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियों का अनुभव होता है और हमारा अंतर मन, हमारी अंतर आत्मा तृप्त हो जाती है। हमें जो चाहिए वो हमारे भीतर है, लेकिन भीतर जाने के लिए हमें बाह्य जगत से स्वयं के मन को भीतर ले जाना पड़ेगा। इसलिए राजयोग के इस अभ्यास के लिए हम श्रेष्ठ चिंतन का आधार लेते हैं। श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा हम स्वयं को उस स्थिति में विजुलाइज करते हैं, देखते हैं और उनका अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सभी एक चमकती ज्योति आत्मा है, जो आत्मा मस्तक के बीच में एक सितारे की तरह विराजित है और उस आत्मा के पिता परम पिता जो भी चमकता सितारा है, जिसको हम परम ज्योति कहते हैं, उस परम ज्योति को भी हम अपने बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं, जिसको हम भक्ति मार्ग में प्राय कहते हैं दर्शन करना। दर्शन करना माना बुद्धि रूपी नेत्र से देखना। तो जब हम उसे देखते हैं तब हमारा मन उससे जुड़ जाता है। तो जब आत्मा समझकर उस परम ज्योति से हम मन से जुड़ जाते हैं तो यही राजयोग है। इसी मिलन में उस पिता से हमें असीम शांति, प्रेम, सुख की अनुभूति होती है, जो अनुभूति आत्मा को संसार से अलग अपने उस आंतरिक जगत में जो अखूट खजाना है उनकी अनुभूति कराती है। तो अब हम चंद क्षणों के लिए उस प्यार भरी अलौकिक अनुभूति में खो जाएंगे। मैं आपको कुछ एक चिंतन देती जाऊंगी, आप उसी चिंतन के आधार पर उस स्थिति को देखेंगे और उसका अनुभव करेंगे। सभी थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएंगे और अपने मन को सभी विचारों से मुक्त करके अपने भीतर ले जाएंगे। महसूस करें, मैं एक चमकता सितारा आत्मा हूं, मस्तक के बीच में एक ज्योति के समान मैं आत्मा विराजित हूं। मुझ आत्मा का स्वभाव शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। ये मेरी आंतरिक दुनिया है जहां सिर्फ मैं हूं। अब अपने सामने अपने परम पिता को देखें, परम ज्योति श्री पिता, एक चमकते तेजस्वी सितारे की तरह मेरे सामने ही है। शक्तियों का स्रोत, पिता से सर्व शक्तियों की लाइट मुझ आत्मा में समाती जा रही है। एक फाउंटेन की तरह महसूस करें, परम ज्योति के पवित्र शक्तियों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्मा हूं। मैं उस पिता की संतान हूं। मेरा मन मेरे पिता के इस दिव्य स्वरूप में एकाग्र हो चुका है। कितनी सुंदर अनुभूति है प्रभु प्यार, परमात्मा मिलन, इस दिव्य अनुभव से मैं स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी शक्तियों से चार्ज हो रही है। अब मैं आत्मा प्यारे पिता से मिलन मनाकर फिर से अपनी इस आंतरिक जगत से बाह्य जगत में प्रवेश करती हूँ। स्वयं को फिर से महसूस करें, मैं चमकता सितारा इस देह का मालिक आत्मा हूँ। इस अनुभूति को बार बार दोहराएं और स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति।
बहुत सुंदर कमेंट्री के माध्यम से और बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट की धुन के माध्यम से हम सभी प्यारे शिव बाबा से जुड़ पाए, मिलन मनाया। सभी ने स्वयं को चार्ज किया, शक्ति से भरपूर किया, असीम शांति का अनुभव किया। तो धन्यवाद बहन निहा जी, भ्राता डेविड जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दीदी जी को। आप महाराष्ट्र चंद्रपुर जोन की सब जोन की संचालिका हैं, आर्ट एंड कल्चर विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपके लिए हम दो शब्द कहना चाहेंगे, जिनका तन मन तप से है पावन, जिनका तन मन तप से है पावन, जो सतयुग का कर रही सृजन, ऐसी आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दीदी जी का हम सब करते शत शत अभिनंदन, हम सब करते शत शत अभिनंदन। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कुसुम दीदी जी अपने सुंदर विचार हम सबके सामने रखें।
ओम शांति। आज का क्या कहेंगे, समाप्ति समारोह या जीवन की शुरुआत? कौन से जीवन की शुरुआत? नए जीवन की शुरुआत, अलौकिक जीवन की शुरुआत है ना। यहाँ कितने कलाकार भाई बहन बैठे, जरा हाथ खड़ा करें जो कलाकार भाई बहन हैं। मैं आप सभी से दो तीन बातें पूछती हूँ। सबसे पहले, जब से आप यहाँ आए हो, क्या आप अपने मन का परिवर्तन अनुभव कर रहे हो? जो समझते हाँ तो हाथ खड़ा करो। ओके। दूसरी बात, मैं यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जा रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत कुछ शक्ति आ गई है, एक नयापन आ गया है, ये अनुभव किया है? जिन्होंने किया है वो हाथ खड़ा करो। अभी जिन्होंने ये अनुभव किया है, क्या इसको आप कंटिन्यू करना चाहते हो? जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं। अभी हम सभी ने प्रस्ताव सुना, उसमें आप सभी ने अपने आप को फिट किया, अंदर से अपने आप से वायदा किया, दृढ़ संकल्प जो लिया है। अभी आप शिव परमात्मा कहेंगे या शिव बाबा कहेंगे? क्या जाना, क्या पाया, क्या कहेंगे, दिल से क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ इसलिए नहीं, या यहाँ इसलिए नहीं, आप दिल से क्या कहेंगे? शिव बाबा कहेंगे या शिव परमात्मा कहेंगे या शिव भगवान कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव बाबा कहेंगे सच। अगर आप शिव बाबा कहेंगे दिल से, तो मैं आप लोगों के लिए दो तीन बातें सौगात के तौर पर बताना चाहती हूँ। जो आप अभी जो प्रस्ताव के बारे में सुन रहे थे, हम सभी ने मिलकर के जो प्रतिज्ञा की, दृढ़ संकल्प किया, और ये अनुभव के आधार से कहते, केवल कहने मात्र नहीं, जो आप सभी ने यहां आजमाया, पाया, अनुभव किया, चिंतन को बदला, यही बातें आप अपने कला के क्षेत्रों को बाजू में रखो। अभी मैं कला की बात नहीं करूंगी, कला 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 बहुत सुना, बहुत हो गया ना, स्टेज की बातें बहुत हो गई। अब जो आपके घर का स्टेज है उसकी बात मैं करना चाहूंगी, जो आपका परिवार है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिनके साथ आप 24 घंटे रहते हैं, आपके जीवन का परिवर्तन, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन करें, ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई जादू, ऐसी कोई बात क्या आप यहां से सीख करके जा रहे हो, या समझते ही कि हमारा घर तो वैसे भी स्वर्ग है, पहले से ही स्वर्ग है, क्या समझते हो? देखो, आपने यहां से यहां दिनचर्या जो देखी है, सवेरे कितने बजे उठना है, क्या करना है, कैसे शिव बाबा को याद करना है, ये बातें जब तक आप अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, तब तक एक जो अनुभव होना चाहिए सदाकाल, वो टिके हमारे लाइफ में, और सदाकाल नस नस में वो अनुभव कायम रहे, वो नहीं होता है। इसीलिए जब आप यहां से भी जाएंगे, तो सबसे पहले यह हरेक ध्यान रखें कि मुझे जैसे इस परिसर ने मेरे विचारों को बदला, हर दिन मैंने जो यहां ज्ञान की बातें सुनी, मेडिटेशन किया, उसने मुझे जो मेरे मन को सबसे पहले परिवर्तन किया, अभी यही मन को लेकर के मुझे अपने घर में जाना है, घर वालों को परिवर्तन करना है, घर के माहौल को परिवर्तन करना है। ये हम हरेक अपने से प्रतिज्ञा करे, दृढ़ संकल्प करे, अगर सचमुच हम शिव बाबा के बच्चे बन करके जा रहे हैं, आए थे मेहमान बन करके, आज मेहमान नहीं है, सुना ना, फैमिली मेंबर बन गए हैं, तो फैमिली मेंबर क्या होते हैं? बाबा के बच्चे बन गए ना आप सभी, तो इसीलिए जैसे यहाँ की दिनचर्या है, उसी प्रमाण आप अपने घर में अपने व्यक्तिगत रूप से जैसे उठते हो, तो नहीं 10 मिनट, नहीं 15 मिनट, नहीं आधा घंटा, केवल 5 मिनट जिस पिता ने हमें इस धरा पर भेजा है, कार्य करने अर्थ, पार्ट अदा करने अर्थ, उस परमात्मा को, उस शिव बाबा को हम प्रेम से कैसे याद करें? जब सवेरे सवेरे किसी के साथ मिलते हैं आप लोग, फ्रेंड के साथ मिलते हैं, बड़ों के साथ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्ते कहते हैं ना, तो सबसे पहला हमारा नमस्ते, सबसे पहला हमारा गुड मॉर्निंग किसके साथ हो? शिव बाबा के साथ। अगर सच्चाई से, दिल से आप हर दिन सवेरे उठते बराबर अगर 5 मिनट भी शिव बाबा के साथ, यहां जो आपने मेडिटेशन की बात सुनी, मेडिटेशन किया, यही बात, यही विचार अपने बुद्धि को एकाग्र करके अगर हर दिन अपने घर में करेंगे, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, परिवार वालों को सिखाएंगे, तो आपके घर का माहौल बदल जाएगा, परिवार के अंदर एक आध्यात्मिकता का रूप आ जाएगा, जो आज, क्योंकि जहां हम रहते हैं, जहां हम जिस प्रकार की बातें करते हैं, वैसा ही हमारे घर का, उस स्थान का वातावरण होता है,
वाइब्रेशन होते हैं। इसीलिए जितना आप यहां से अपने मन को स्ट्रांग करके जा रहे हो, वो मन को वैसा ही कायम रख के और भी उसके अंदर बल भरते रहिए और अपने साथ अपने परिवार को भी जागरूक कीजिए, उनके अंदर भी ये आध्यात्मिकता भरिए, ताकि आपका जो घर का वातावरण है वो अगर कोई ऊपर नीचे है या कोई बात ऐसी है या मनमुटाव है, आपस में कहीं प्यार नहीं है तो कहीं झगड़ा है, जो भी चीज है जो आप हरेक समझता है वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है, जब भी कोई बात सामने आए, जब भी कोई परिस्थिति सामने आए, किसको याद करें? पहले किसको याद करेंगे? कैसी है ये परिस्थिति, अभी कैसा किया जाए, अभी क्या करूं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? अपने माइंड को एकाग्र करो, 5 मिनट शिव बाबा को याद करो, बाबा को कहो कि बाबा अब इस परिस्थिति से आपको ही कुछ ना कुछ मार्ग निकाल कर देना है, आप उसके ऊपर सौंप दो, आप निश्चिंत हो जाओ, आप देखेंगे कि कैसा वो मार्ग निकलता है, कैसे आप निश्चिंत हो जाते हैं। करके देख लेना ये चीज, हम अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार से कह रहे हैं, ताकि आप जो माइंड का बोझ लेके चलते हो ना, सदा टेंशन 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 टेंशन, ये सब यहां ही छोड़ के चले जाना, और सदा उसके अलावा मुझे शिव बाबा को हर पल याद करते रहना है, हर परिस्थिति में हर कर्म के साथ। ये अगर आप यहां से सीख करके जाएंगे तो अवश्य आपका जीवन, जो आप दूसरों को कला सिखाते हो, दूसरों को कला दिखाते हो, पहले खुद कला की खान बन जाएंगे, आपका जीवन कलावान बन जाएगा। इसीलिए अगर ये एक भी शिक्षा अगर अपने साथ लेकर के यहां से जाएंगे तो आपका ये इतने दूर से आना, सफर करना, इतना समय देना, ये सब सफल हो जाएगा और जीवन आपकी धन्य हो जाएगी। आपने यहाँ अनुभव सुना ना, प्रैक्टिकल आपके सामने उदाहरण है। अभी आप तो शायद मुझे कहेंगे, बहन आपने तो अपना लाइफ दे दिया, एक जगह बैठ गई हो, आपको क्या पता हमारे घरों में क्या होता है, आप हमारे घर में आके देखो पता चलेगा। लेकिन आपके ही शरीर का घर में रहते हुए भी और बाहर जाकर के अपना जॉब करते हुए भी अपने जीवन में ज्ञान को कैसे ढाला और कैसे लाइफ को चेंज किया, वो मोनिका बेन आपके सामने प्रैक्टिकल उदाहरण है जो आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए आपको भी ये लगता है ना कि ये बात संभव है या असंभव? क्या कहेंगे आप सभी के लिए, संभव संभव है? अगर कहते हैं तो हाथ खड़ा करो, जरा देखूं मैं सच्ची सच्चे दिल से। तो अभी मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लेती हूं, लेकिन जैसे आप मॉर्निंग की शुरुआत शिव बाबा के साथ गुड मॉर्निंग करते हुए करते हो, वैसे ही जब भोजन करते हो, भोजन की शुरुआत भी अगर उस पिता को अर्पण करते हुए आप करेंगे, वो भी एक प्रसाद का रूप ले लेगी, वो भी आपके मन को शुद्ध बना देगा, और रात को जब आप सोते हो तो उस पिता से गुड नाइट करके सोएंगे, आपकी नाइट भी सुंदर हो जाएगी। किसी भी प्रकार की बात ऐसी नहीं रहेगी जिसके पीछे आप परेशान हो जाओ, ठीक है? इसीलिए अभी आप 3 बार मेरे साथ कहो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हमारा बाबा, सर्व का बाबा। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स कुसुम दीदी जी, आपने बहुत प्रेरणादायी शब्द हम सबको कहे, और दिनचर्या में अमृत वेले से लेकर के भोजन करना, कर्म करते हुए भगवान को अपना साथी बना करके रखना, सदा उनके साथ रहना, कर्म योगी बनना, तो सब प्रेरणाएं बहुत सुंदर आपने हम सबको दी। तो सभी जोरदार ताली से धन्यवाद करेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार अनिल भाई जी को, आप मुंबई से हैं, आर्ट एंड कल्चर विंग के आप एक्टिव मेंबर हैं, आभार का भार ग्रहण करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। ये आभार और धन्यवाद का जो मुझे भार दिया गया है वो मैं चंद शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले तो हम अपने प्यारे पिता शिव बाबा को, जिसको हम परवरदिगार कहते हैं, परम शक्ति परम चेतना सर्वशक्तिवान है, जो हमारे दुख हरता सुख करता है, जो करण करावन हारे, ऐसे प्यारे परम पिता श्री परमात्मा को बड़े कोटि कोटि वंदना करके आभार वंदना करता हूँ। साथ में हमारे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा, जो शिव बाबा के आधार बना करके देवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, देवी संस्कृति की स्थापना कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा को बहुत बहुत दिल के स्नेह से आभार वंदना स्नेह भाव से करते हम सभी, क्योंकि आज उन्हीं की तपस्या से हम यहाँ बैठे हैं। साथ में हमारी पूर्वज दादियां, जो मम्मा हैं, जो प्रकाशमणि दादी हैं, और बहुत अग्रणीय वरिष्ठ दादियां, और वर्तमान में दादी जानकी जी जो आज 100 साल हैं, उनकी त्याग तपस्या और सेवा से आज आप इतनी ईश्वरीय सेवा का सुचारू रूप से संचालन पा रहे हो, ये ईश्वरीय सेवा का संसार चल रहा है। तो उन दादियों को, शिव शक्तियों को मैं बहुत बहुत दिल के स्नेह से धन्यवाद कहता हूँ। बहुत सारे विश्व का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि वो विश्व कल्याणकारी है सभी आत्माएं। साथ में मेरी गार्डियन एंजल रूप में की मेरी स्पिरिचुअल मदर थी उषा दीदी, जो इस ये विंग की स्थापक थी, वो रमेश भाई जी की युगल मूर्त बोलो, अर्धांगिनी बोलो। आज उनकी एक ऐसा शुभ संकल्प था कि कला के द्वारा हर आत्मा को संदेश प्राप्त होवे, या गीत संगीत नृत्य कला द्वारा। तो उनकी चेतना, दिव्य शक्ति, ये शुभ भावना शुभ कामना आज भी मैं समझता हूँ बहुत ही कार्यवंत है। मैं उस देवी की, कला की देवी का भी मैं आभार वंदना करूंगा। साथ में रमेश भाई जी का तो है ही है, क्योंकि उसकी अनडाइंग स्पिरिट देखकर मैं सैल्यूट करता हूँ रमेश भाई को। आज 3 दिन नीचे शांतिवन से ऊपर आकर के अपने हर कार्यक्रम को बड़े प्रेम भाव से अटेंड किया, और आपको मार्गदर्शन दिया, आपको दिव्य गुणों के संस्कारों से संचित किया। मैं रमेश भाई, उषा दीदी का बहुत बहुत दिल से स्नेह से आभार वंदना करता हूँ। साथ में हमारे विशिष्ट जो महानुभव है, जो गेस्ट आए हैं, मैं उनका भी एक एक कड़ी में आभार व्यक्त प्रकट करूंगा। आप सब शांति से धैर्यता से सुनकर उनका भी तालियों से जरूर अभिवादन करना। ओम शांति। अपने प्राण, अपने दयाल भाई जी जो है, उनका बहुत ही मृदुल स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है, सज्जन है, और उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है आप देख रहे हो, तो उनको मैं बहुत ही दिल से थैंक्स कहूंगा कि आज आप जो आ रहे हो, तो दयाल जी को आभारी है। दयाल भाई, आपको धन्यवाद। साथ में हमारे डेविड भाई जो हैं, जो इसने डीप डीप साइलेंस का बहुत ही सुंदर अनुभव कराया, और अभी भी नेहा बेन के साथ में इन्होंने जो मेडिटेशन में कराया वो साइलेंस ऑफ इको था, तो हम डेविड भाई का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। और जो हमारी छोटी बहन थी, जो कुमारी भूमि, उन्होंने नृत्य कला द्वारा सबको सादर स्वागत किया। वो कुमारी का भी मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और बहुत प्यार से उन्होंने स्वागत किया, उसके लिए उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ब्रह्म कुमार करुणा जी के बारे में बात करूंगा। वो भी साकार बाबा मम्मा के समय के बहुत वरिष्ठ भाई हैं, जिन्होंने हमने देखा हुआ है कि उस वक्त कुछ यज्ञ में नहीं था, सिर्फ साइकिल द्वारा सेवा करते थे। आज सैटेलाइट द्वारा वो विश्व में संदेश फैला रहे हैं। तो साइकिल टू सैटेलाइट के द्वारा जो इतनी व्यंग मार्ग की सेवा की, करुणा जी को मेरा बहुत बहुत हृदय पूर्वक नमन सम्मान सत्कार और शुक्रिया। आज अपने सामने प्रीतपाल सिंह जी हैं, उन्होंने आध्यात्मिकता की वैल्यूज के बारे में बहुत सुंदर बताया अपनी कहानी द्वारा। वो तो वेरी अमेजिंग स्टोरीज, वेरी परफेक्ट ऑरेटर, आई थिंक सो। प्रीतपाल सिंह जी को बहुत बहुत आभार, और उनके लिए विशेष तालियां की कक्कल ध्वनि से स्वागत करें हम। हमारे प्रभजन चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर अपने मधुर कंठ से मंत्र मुग्ध कर दिया।
जैसे कि हम जैसे कि मानवता में भगवान के दर्शन करा दिया, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिवादन और अभिनंदन देता हूं। मोनिका पटेल तो हमारी बहन भी हैं, साथ में प्रेरणा स्रोत है आप कलाकारों की। उन्होंने जो अपना अनुभव वर्णन किया, हम चाहते हैं कि उसकी सुंदर छोटी किताब और लेख लिख करके जन जन को फैला आवे। मोनिका पटेल बहन के तो दो शब्दों में मैं तारीफ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कहूंगा बहुत बहुत प्रेरणा स्रोत के लिए धन्यवाद। हमारे सतीश जी को तो हम यही कहूंगा कि सतीश भाई ने 5000 गीत लिख करके जन जन को प्रभु का प्रभु से प्रीत जुड़ाने की रॉयल्टी अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि इतनी उनके दिव्य शक्तियां हैं गीत कलम में कि जो मैं कहता हूं कि सतीश भाई की तुलना में कोई नहीं आ सकता है। सतीश भाई हमारे बहुत ही सुंदर विचार द्वारा उन्होंने जो प्रतिज्ञा कराई, हम सभी उसने जीवन में उतार करके जीवन दिव्य संपन्न बना करके देवी संस्कृति की स्थापना में निमित्त और सहयोगी बनेंगे। सतीश जी का बहुत बहुत सहयोग देने के लिए आभार। हम कुसुम दीदी तो हमारी प्रेरणा स्रोत है, हमारी एक लीडर है, और जो आज भी हम देख रहे हैं कि इतना जो सुचारू संचालन हो रहा है, एक कुसुम दीदी को आभारी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, कुसुम दीदी ने बताई कि आप शिव बाबा को जरूर याद करना, कोई भी तकलीफ आएंगी और आने ही वाली है तो क्या 3 शब्द याद करना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस देखो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। उसने पक्का कराया है और सदा पक्का रखना। पक्का कराने के लिए मैं कुसुम दीदी को बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं और नमन करता हूं। और हमारे चक्रेश भाई जी हैं, जिन्होंने बहुत एक ही लाइन में बहुत अच्छी चीज बताई कि सच्चे मन से जो भी कार्य करो वो सफलता प्राप्त हो जाएंगी। तो दिल के सच्चे बनो, परमात्मा से भी सच्चे बनो। बाकी उन्होंने सार रूप में कि मैं कहूंगा चक्रेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और हमारे मधुरवाणी ग्रुप जो गोविंद भाई जी, रमेश भाई जी और विशेष सतीश भाई जी, जो अपने मधुर आवाज द्वारा और मधुर शब्दों की एक जादुई शब्दों द्वारा सबका बहुत स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा समापन नहीं है, ये नहीं जीवन का आरंभ है, और नई जीवन द्वारा नई संस्कृति और नए संसार का भी आरंभ होगा। तो मधुरवाणी ग्रुप का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे पास जो नेहा बेन बैठी हैं, एक एंजल के रूप में हैं, उसने तो परमात्मा से नेह लगाने के लिए जो बहुत ही डीप साइलेंस का अनुभव कराया है, तो नेहा दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्नेह संपन्न याद कराई, परमात्मा से प्रीत जुड़ाई, उसकी बहुत विधि बताई। मैं चाहता हूं कि आप ये विधि अपने दिल के अंदर रखकर रोज रिपीट करना, तो रोज दिव्य अनुभूति से आपको सुंदर शांति की प्राप्ति होगी। नेहा दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी विशेष प्रेम बहन, जो बहुत प्यार से प्रेम स्वरूप से उन्होंने संचालन का बड़ा सुचारू रूप से संचालन किया, प्रेम बहन का बहुत बहुत धन्यवाद आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में मैं विशेष कह के कहूंगा कि यहाँ जो आप ज्ञान सरोवर में एक एक डिपार्टमेंट ने जो सेवाएं दी हैं, अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, भोजन डिपार्टमेंट, जो भी हमारे डिपार्टमेंट के एक एक वरिष्ठ भाई, उसके साथ साथी स्नेही सहयोगी सेवाधारी भाइयों का नाम सही दिल से हृदय के अंतकरण से आभार व्यक्त करके आप सबकी तरफ से भी आभार प्रकट करता हूं। सबको मेरे आभार। और विशेष करके हमारी जो टीम है कल्चर विंग की, इसमें नेहा दीदी की टीम है, कुसुम दीदी की टीम है, शीतल दीदी की टीम है, अल्पा बेन, भावना बेन, करुणा बहन, तृप्ति बहन, विशिष्ट एक एक वरिष्ठ बहनों को मैं बहुत हृदय के भाव से इस सुचारू रूप से इस कार्यक्रम का संचालन किया, समापन किया, इन सबको मेरे दिल के स्नेह भाव से, सम्मान भाव से शुक्रिया, आभार और थैंक्स। और आप सब जो बैठे हैं, हमारी नेहा दीदी बोलते हैं ये तो अपने घर का श्रृंगार है, आप आए मेहमान बनकर, अभी आप क्या बनकर जाएंगे, बाबा के बच्चे बनकर अर्थात मालिक बनकर जाएंगे। ऐसे घर के श्रृंगार के बच्चे को बहुत बहुत दिल के स्नेह संपन्न याद प्यार, परमात्मा की दुआएं, स्वीकार करना, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आकर अपनी जीवन बनाकर जाएंगे। ओम शांति।
सबका धन्यवाद करने वाले भ्राता अनिल जी का भी हम सभी की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। अभी मेहमानों को का सम्मान करेंगे आदरणीय दीदी, और मधुर वाणी ग्रुप एक और गीत हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे आदरणीय सतीश भाई जी, रमेश भाई जी एक सुंदर गीत हमको सुनाएंगे। हाँ, भ्राता प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, भ्राता चक्रेश जी, भ्राता प्रभंजय जी, सबका सम्मान हो रहा है। आप सभी भी तालियां बजाएं, आप भी पार्टिसिपेट करें। भ्राता प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, हम सब अब सुनते हैं भ्राता सतीश जी, रमेश जी से।
ओम शांति। ये फेयरवेल सॉन्ग है, कहने को विदाई गीत है, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इस परिवार में विदाई नहीं कहा जाता है, बधाई कहा जाता है। ये जाने की वेला भले कह ले, लेकिन हम जा रहे हैं अपने साथियों को और सबको लाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए ये विदाई नहीं है, ये बधाई है। आप जा नहीं रहे हैं, जा करके औरों को लाने के लिए आप जा रहे हैं। सचमुच यहां से जाने का मन तो नहीं कहता है, शायद मेरे इस कथन में आप पूरी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। दिल कहता है कि ऐसे दिन चलते रहें। इस अलौकिक अनुभूतियों भरे परिसर में हम बार बार आते रहें और मिलते रहें। आइए कुछ उन्हीं भावों को, आपके हृदय की भावों को हम अपने दिल से कह रहे हैं कि बार बार दिन आए, रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहें, खिलते रहें। बड़े भाग्य से मिली हैं घड़ियां, हम और आप मिलते रहें, खिलते रहें, चलते रहें, मिलते रहें।
रूहानी गुलशन में फूल बन कर आते रहे, खिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बन कर आते रहे, खिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे, खिलते रहे। बड़े भाग्य से मिली हैं घड़ियां, हम आप ऐसे मिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे, खिलते रहे। आप बिना ये योजना अब तक रही अधूरी है, अपना बहुत जरूरी है। आए आप हमें बड़ी खुशी है, आए आप हमें बड़ी खुशी है, साथ साथ मिल चलते रहे। बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां, हम आप ऐसे मिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे, खिलते रहे। प्रभु पितार दादी सीमा, शीतल शीतल आंचल है। फरिश्तों जैसे हैं भाई बहने, ये घर स्वर्ग से बेहतर है। जहां से जाने को जीना करता, जहां से जाने को जीना करता, प्रभु पलकों में पलते रहे। बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां, हम आप ऐसे मिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे, खिलते रहे। बात कोई गर बुरी लगी तो मलाल उसका ना कीजिए, हम आपके हैं घर आपका है, माफ हमें कर दीजिए। दादी संग हम सारे कहते, दादी संग हम सारे कहते, भला करे भूलते रहे। बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां, हम आप ऐसे मिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे, खिलते रहे। यहाँ के अनुभव सुनाते सबको, प्रभु पास में लाना है। मूल्यों की जो महक मिली है, मन मधुबन महकाना है। दिलों में सबके घना अंधेरा, दिलों में सबके घना अंधेरा, सघन ज्योति बन जलते रहे। बड़े भाग्य से मिली है घड़ियां, हम आप ऐसे मिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे, खिलते रहे। रूहानी गुलशन में फूल बनकर आते रहे, खिलते रहे, हम आप ऐसे मिलते रहे, साथ साथ मिल चलते रहे।
बहुत सुंदर गीत, बहुत बहुत थैंक्स।